आगे सबक देखिए भाई। बाबुल यमीन फिल हज व सलाति व सौम قال ومن قال وهو في الكعبة أو في غيرها علي المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة فعليه حجة أو عمرة ماشية وإن شاء ركب وأهرى قدما وفي القياس لا يلزمه شيء لأنه التزم ما ليس بقربة واجبة ولا مقصودة في الأصل। भाई गुज़श्ता सबक में आपने मसला पढ़ा था कि एक शख्स ने एक बांदी से निकाह किया है और उससे उसकी औलाद भी हुई है और इस बांदी से वो कहता है कि अगर मैंने तुझे खरीदा तो तू मेरे कफारे कसम के अंदर आजाद है, और फिर उसके बाद इसने अपनी इस उम्मे वलद को खरीद लिया तो खरीदते ही ये आजाद हो जाएगी लेकिन कफारा अदा नहीं होगा। वजह यह कि कफारा अदा होने के लिए जरूरी है कि वो रकबा जो है कामिल तौर पर कफारे के अंदर आजाद किया जाए, वो रकबा किसी और एतबार से आजादी की मुस्तहिक ना हो, और ये बांदी तो इसके उम्मे वलद है, ये तो पहले से ही आजादी की मुस्तहिक हो चुकी है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर किसी आम बांदी से कहा कि अगर मैंने तुझे खरीदा तो तू मेरी कसम के कफारे के अंदर आजाद है, तो उस बांदी को जब ये खरीदेगा तो वो आजाद हो जाएगी और कफारे कसम भी अदा हो जाएगा, क्योंकि ये और किसी लिहाज से आजादी की मुस्तहिक नहीं है। और फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि एक शख्स कहता है इन तसर्रैतु जारियतन फहिया हुर्रतुन, कि मैंने अगर किसी बांदी से सोहबत की तो वह आजाद है, तो इस सूरत में ये यमीन जो है उन बांदियों के हक में मुनाकिद हुई है जो इस यमीन के वक्त उसकी ममलूका हैं, तो लिहाजा अपनी ममलूका बांदियों में से किसी के साथ ये सोहबत करेगा तो उसके हक में शर्त पूरी हो गई लिहाजा वो आजाद हो जाएगी। लेकिन अगर इसके बजाय इस यमीन के बाद वो किसी बांदी को खरीदता है तो उसके हक में यमीन मुनाकिद नहीं हुई लिहाजा उसके साथ तसर्री करेगा यानी जिमा करेगा तो वो आजाद नहीं होगी, जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो बांदी भी आजाद हो जाएगी, इसलिए क्योंकि तसर्री जो है वो तो अपनी ममलूका बांदी के अलावा और किसी बांदी के साथ जायज नहीं। तो तसर्री का जिक्र करना ऐसे ही है जैसे मिल्कियत को जिक्र करना कि मैं अपनी ममलूका बांदी से तसर्री करूं, और यह बांदी जो इसने बाद में खरीदी है यह भी इसकी ममलूका बांदी हो चुकी है लिहाजा इसके साथ भी तसर्री करेगा तो यह आजाद हो जाएगी। वो फरमाते हैं यह इसी तरह है जैसे कोई शख्स तलाक को यमीन के अंदर जिक्र करे तो तलाक तो बगैर निकाह के नहीं हो सकती, तो लिहाजा वहां निकाह भी खुद ब खुद मजकूर मानना पड़ेगा। मसलन एक शख्स एक अजनबिया से कहता है इन तल्लक्तु की फाबदी हुर्रुन, अगर मैंने तुझे तलाक दी तो मेरा गुलाम आजाद है। अब ये तो अजनबिया औरत है और इसको वो तलाक देने की तालीक कर रहा है, तो और तलाक तो बगैर निकाह के नहीं हो सकती, तो तलाक का जिक्र ऐसे ही है जैसे कि निकाह का जिक्र किया जाए। तो गोया उसने यूं कहा है कि अगर मैंने तुझसे निकाह किया और फिर तुझे तलाक दी तो मेरा गुलाम आजाद है भाई। और जबकि हम कहते हैं कि हां आपकी बात हमें तस्लीम है, तसर्री का जिक्र जब किया जाए तो गोया मिल्कियत को भी जिक्र कर दिया गया, तो यहां पर जो मिल्कियत को मजकूर माना गया उसका तकाजा तसर्री ने किया है, यानी इक्तेजान मिल्कियत को मजकूर माना गया क्योंकि तसर्री के लिए जरूरी था मिल्कियत का होना, तो गोया तसर्री की जरूरत की वजह से मिल्कियत को मानना पड़ा, और जो चीज जरूरत की वजह से साबित होती है वो बकदरे जरूरत ही साबित होती है। तो इस सूरत में तसर्री जो कि शर्त के अंदर जिक्र है उसके हक में तो मिल्कियत मजकूर हो गई, लेकिन यमीन तो सिर्फ शर्त का नाम नहीं है, यमीन तो शर्त और जजा दोनों के मजमूए का नाम है, तो सिर्फ शर्त में मिल्कियत का मजकूर होना काफी नहीं है बल्कि जजा के हक में भी मिल्कियत मजकूर होनी चाहिए, लेकिन जजा के हक में तो मिल्कियत मजकूर नहीं है क्योंकि वहां पर तो कोई जरूरत नहीं है मिल्कियत को मानने की, लिहाजा ये यमीन उस बांदी के हक में मुनाकिद ही नहीं हुई जिसको इसने अभी खरीदा ही नहीं है, लिहाजा उसको खरीदेगा और उसे तसर्री करेगा तो वो आजाद नहीं होगी। और नीस इमाम जुफर रहमतुल्लाह ने इस तसर्री के मसले को कियास किया था तलाक के मसले पर, तो उसका भी जवाब दिया कि तलाक का मसला भी इसी मसले की तरह है, वहां पर भी जो निकाह को मजकूर माना गया है वो शर्त के हक में तो मजकूर है लेकिन जजा के हक में मजकूर नहीं, लिहाजा वो यमीन भी मुनाकिद नहीं हुई, क्योंकि यमीन सिर्फ शर्त का नाम नहीं बल्कि शर्त और जजा दोनों का नाम है, तो दोनों के हक में निकाह मजकूर होगा तो फिर ही यमीन भी मुनाकिद होगी। भाई फिर उसके बाद बतलाया अगर कोई शख्स ये कहता है कि मेरे तमाम ममलूका गुलाम और बांदियां आजाद हैं तो फिर इस सूरत में कौन कौन से गुलाम इससे मुराद होंगे, तो साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि इस सूरत में उस शख्स की तमाम उम्महात औलाद भी आजाद हो जाएंगी, तमाम मुदब्बर भी और आम गुलाम और बांदियां भी, लेकिन मुकातब आजाद नहीं होंगे, उनकी बाकायदा नियत करना पड़ेगी। वजह यह कि मुकातब की मिल्कियत में कमी आ गई है, अब बाकी गुलाम जो हैं उनके अंदर तो वो रकबा यानी जात के एतबार से भी ममलूक हैं और कब्जे के एतबार से भी ममलूक हैं, जबकि मुकातब जात के एतबार से तो आका का ममलूक है, उसका गुलाम है, लेकिन कब्जे के एतबार से आका का ममलूक नहीं बल्कि कब्जे के एतबार से तो वो आजाद आदमी की तरह है, आका उसे जबरदस्ती खिदमत नहीं ले सकता, आका उसकी कमाइयों का मालिक नहीं है, और नीज अगर वो मुकातबा है तो आका उसे वती नहीं कर सकता। तो मालूम हुआ मुकातब का रकबा तो ममलूक है लेकिन कब्जा ममलूक नहीं, तो उसकी मिल्कियत में कमी आ गई, लिहाजा उसकी बाकायदा नियत करना पड़ेगी फिर ही वो इसके अंदर दाखिल होगा, और अगर नियत नहीं की तो फिर वो इन अल्फाज में दाखिल नहीं होगा, ये जो इसने कहा था कि कुल्लु ममलूकिन ली फहुवा हुर्रुन। और अगर फिर मसला जिक्र फरमाया साहिब हिदाया ने कि अगर एक शख्स जो है अपनी बीवियों से कहता है हादही कालिकुन औ हाजही व हाजही, यानी तीन बीवियों की तरफ उसने इशारा किया और पहली दो के दरमियान औ लेकर आया और आखिरी दो के दरमियान वाव लेकर आया, तो फिर इस सूरत में पहली दो बीवियों में से एक को तलाक हुई और आखिरी वाली को भी तलाक हो गई, और तायीन का इख्तियार इस आदमी को है। और फिर मसला जिक्र फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी कसम के अंदर बेउ शिरा या तजवुज वगैरह को जिक्र करता है, मैंने आपको बतलाया कि अफाल कई किस्म के हैं, बाज अफाल वो हैं कि जिनके अंदर नियाबत जारी होती है इंसान दूसरे को अपना वकील बना सकता है, और बाज अफाल वो हैं कि जिनके अंदर इंसान दूसरे को अपना वकील नहीं बना सकता, जैसे खाना और पीना है, खाने और पीने में कोई किसी को अपना वकील नहीं बना सकता क्योंकि वकील के खाने और पीने से मुअक्किल की जरूरत पूरी नहीं हो सकती, उसका पेट नहीं भर सकता। तो बाज अफाल ऐसे हैं उनमें नियाबत यानी नाइब होना जारी होता है और बाज में जारी नहीं होता। फिर इसी तरह बाज अकद ऐसे हैं कि उनमें हुकूक अकद का ताल्लुक आकिद से होता है जो अकद कर रहा है, और बाज अकद ऐसे हैं कि उनमें हुकूक अकद का ताल्लुक जो है मुअक्किल से होता है। तो इन सब का हुक्म साहिब हिदाया ने बयान फरमाया। सबसे पहले बेउ शिरा को बयान किया, बेउ शिरा के अंदर नियाबत जारी होती है, आप कोई चीज खरीदना चाहें तो खुद भी खरीद सकते हैं, किसी दूसरे को भी कह सकते हैं, वो आपके लिए कोई चीज खरीद लेगा या बेच देगा, और नीज इसके अंदर हुकूक आकद का ताल्लुक आकिद से होता है। तो अगर किसी शख्स ने कहा कि वल्लाह मैं बेअ नहीं करूंगा या शिरा नहीं करूंगा या इजारा नहीं करूंगा, तो फिर इस सूरत के अंदर अगर उसने अपना वकील बना दिया और उस वकील ने यह फेल कर दिया तो फिर भी यह हानिस नहीं होगा, क्योंकि यह फेल वकील ने किया है और नीज हुकूक का ताल्लुक भी वकील ही के साथ है। हां अगर वो वकील की नियत भी कर लेता है कि मैं बेउ शिरा वगैरह खुद भी नहीं करूंगा और किसी दूसरे के जरिए भी नहीं करवाऊंगा, तो फिर वकील भी बेउ शिरा इसके लिए करेगा तो ये हानिस हो जाएगा। या कोई ऐसा आदमी है कि जो साहिब मनसब है साहिब इख्तियार है वो खुद बेउ शिरा करता ही नहीं है, बादशाह है या हाकिम है या काजी है या इस तरह कोई और बड़ा ओहदेदार है जो खुद बेउ शिरा करता ही नहीं है बल्कि अपने वकीलों के जरिए बेउ शिरा का फेल करता है, तो इस किस्म का आदमी अगर ऐसी कसम खाएगा कि मैं बेउ शिरा नहीं करूंगा, तो इसका मतलब यह है उसकी जो आदत है उससे अपने आप को रोकना चाहता है, खुद अपनी बै से अपने आप को नहीं रोकना चाहता, क्योंकि खुद तो ये बै करता ही नहीं है, ये तो बै वगैरह करता ही अपने वकील के जरिए है, तो उससे अपने आप को रोकना चाहता है। तो लिहाजा इस सूरत के अंदर अगर इसका वकील भी बै और शिरा करेगा तो ये हानिस हो जाएगा, चाहे खुद करे फिर भी हानिस और चाहे वकील करे फिर भी हानिस हो जाएगा। और अगर यही कसम किसी शख्स ने निकाह तलाक या एताक के बारे में खाई, तो याद रखो ये निकाह तलाक और एताक वगैरह जो हैं इनमें हुकूक का ताल्लुक मुअक्किल से होता है, हत्ता के वकील बाकायदा मुअक्किल को जिक्र करता है कि मैं उसका निकाह करवा रहा हूं या मैं उसकी तरफ से तलाक दे रहा हूं या मैं उसकी तरफ से एताक कर रहा हूं। तो यहां हुकूक आकद का ताल्लुक वकील से नहीं होता। तो इन मामलात के अंदर अगर एक शख्स कसम खाता है कि वल्लाह मैं निकाह नहीं करूंगा या मैं तलाक नहीं दूंगा या मैं एताक नहीं करूंगा, और फिर इसने अपने वकील के जरिए यह फेल सर अंजाम दिया, तो फिर भी हानिस हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है कि मेरा मतलब तो यह था कि मैं खुद यह अफाल सर अंजाम नहीं दूंगा, तो फिर दयानतन उसकी तस्दीक की जाएगी लेकिन कजाअन तस्दीक नहीं की जाएगी। जबकि इसके मुकाबले में अफाल हिस्सिया, वो अफाल जो आंखों से हमें होते हुए नजर आए, उनके अंदर अगर किसी को अपना नाइब बनाता है तो उस सूरत में भी वो नाइब वो फेल करेगा तो ये हानिस हो जाएगा, क्योंकि वो इसके कहने पर ये फेल कर रहा है। मसलन एक शख्स ने कसम खाई कि वल्लाह मैं अपने गुलाम की पिटाई नहीं करूंगा, अब ये पिटाई करना ये तो फेल हिस्सी है, हमें आंखों से नजर आता है जब कोई किसी की पिटाई कर रहा हो। और इसी तरह बकरी का जिबा करना, एक शख्स कहता है वल्लाह मैं अपनी भेड़ बकरी जिबा नहीं करूंगा, अब ये भेड़ बकरी का जिबा करना ये तो एक फेल हिस्सी है, हमें आंखों से वो जानवर और वो हैवान जिबा होता हुआ नजर आता है। तो इसके अंदर अगर किसी को नाइब बनाता है तो इसमें नियाबत तो जारी होती है, लेकिन यहां पर इस फेले हिस्सी के कोई हुकूक नहीं है जो वकील के साथ मुतालिक हों, और नीज इसका फायदा भी आमिर यानी मुअक्किल की तरफ लौट रहा है, तो वकील का करना भी ऐसा ही है जैसे मुअक्किल ये कर रहा हो। तो लिहाजा इस सूरत में चाहे मुअक्किल खुद इन कामों को करे चाहे वकील के जरिए करवाए, ये हानिस हो जाएगा। लेकिन अगर ये शख्स कहता है मैं हानिस नहीं हूं क्योंकि मेरी नीयत तो ये थी कि मैं ये खुद अफाल सर अंजाम नहीं दूंगा, और मैंने तो खुद ये अफाल सर अंजाम नहीं दिए बल्कि मेरे वकील ने सर अंजाम दिए हैं, तो फिर इस सूरत में दयानतन भी इसकी तस्दीक की जाएगी और कजाअन भी तस्दीक की जाएगी। और फिर साहिब हिदायत ने फर्क बयान फरमाया कि निकाह और तलाक के मसले में कजाअन उसकी तस्दीक नहीं करेंगे और फेल हिस्सी के अंदर कजाअन भी इसकी तस्दीक करेंगे। तो उसकी वजह जिक्र फरमाई कि वजह यह है कि तलाक निकाह एताक वगैरह ये उन अल्फाज पर तकल्लुम का नाम है जिनसे निकाह हो जाए या तलाक हो जाए या एताक हो जाए, ये उन अल्फाज पर तकल्लुम का नाम है, और इन चीजों का हुक्म देना भी इसी तरह है जैसे खुद इन पर तकल्लुम कर रहा हो। भाई इन चीजों का तलाक एताक और निकाह का हुक्म देना भी इसी तरह है जैसे ये खुद इन पर तकल्लुम कर रहा हो। और नीज जो इसने लफ्ज जिक्र किए थे कि मैं निकाह नहीं करूंगा, ये लफ्ज आम है, ये चाहे खुद निकाह करे चाहे वकील के जरिए करवाए फिर भी कहा जाता है इसने निकाह कर लिया, ये चाहे खुद तलाक दे चाहे वकील के जरिए तलाक दे, दोनों सूरतों में कहा जाता है इसने तलाक दे दी है। तो लिहाजा इसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो आम थे, वो इसके फेल को भी शामिल हैं और वकील के फेल को भी शामिल हैं। और ये कहता है कि मैंने तो सिर्फ अपने फेल की नियत की थी कि मैं खुद ऐसा नहीं करूंगा, तो मालूम हुआ ये आम के अंदर खास की नियत कर रहा है और आम के अंदर तो खास की नियत जायज है और दयानतन इसकी तस्दीक की जाती है, लेकिन कजाअन तस्दीक नहीं की जाएगी क्योंकि ये जाहिर के खिलाफ है। जाहिर तो यही है, इसने अल्फाज आम इस्तेमाल किए हैं तो हुक्म भी आम ही होना चाहिए भाई। जबकि इसके मुकाबले में जिबा करना है या गुलाम की पिटाई वगैरह ये जो अफआल हिस्सिया हैं इनके अंदर तो ये इस फेल को हकीकतन करने वाला नहीं है, हकीकतन तो वकील फेल कर रहा है और इस वक्त मुअक्किल की तरफ जो फेल की निस्बत की जाती है वो मजाजन की जाती है कि चूंकि ये हुक्म इसने दिया था तो गोया इसने ही ये फेल किया है, तो हकीकत के अंदर वो फेल करने वाला वकील है यह शख्स हकीकत में फेल करने वाला है ही नहीं। तो इसने भी कहा कि मेरी तो यह नीयत थी कि मैं ये अफाल खुद सर अंजाम नहीं दूंगा, तो इसने अपने कलाम के हकीकी माना का इरादा किया, क्योंकि यह फेल खुद हकीकतन खुद करेगा तो यह करने वाला है, और अगर वकील ने फेल किए हैं तो हकीकत में यह फेल इसने नहीं किए, तो यह अपने कलाम के हकीकी माना की नीयत कर रहा है, लिहाजा कजाअन भी तस्दीक की जाएगी और दयानतन भी तस्दीक की जाएगी। और जबकि इसके मुकाबले में अगर कोई शख्स कसम उठाता है कि वल्लाह मैं अपनी औलाद की पिटाई नहीं करूंगा, फिर इसने किसी शख्स को हुक्म दिया कि मेरे बेटे की पिटाई करो, तो उस वकील ने पिटाई की, तो इस सूरत के अंदर ये हुक्म देने वाला जो है हानिस नहीं होगा। वजह यह है कि यहां पर इस पिटाई का असल फायदा बच्चे को ही हो रहा है, वो अदब सीख रहा है, उसकी इसलाह हो रही है, वो सही रास्ते पर आ जाएगा, तो असल फायदा बच्चे का ही है, बाप को भी फायदा है, लेकिन ज्यादा और असल फायदा किसका है, बच्चे का है, लिहाजा इस फेल की निस्बत आमिर की तरफ नहीं होगी, क्योंकि असल फायदा उसका नहीं है, जबकि गुलाम के मसले में असल फायदा आमिर का था कि गुलाम की जब पिटाई होगी तो वो गुलाम इसकी ज्यादा बात मानेगा, इसके हुक्म की ज्यादा तामील करेगा, तो लिहाजा गुलाम की पिटाई वो भी फेले हिस्सी है, बेटे की पिटाई वो भी फेले हिस्सी है, लेकिन बहरहाल दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि गुलाम की पिटाई का फायदा आमिर को है और बेटे की पिटाई का फायदा आमिर को, यानी असल फायदा आमिर को नहीं है, लिहाजा इस सूरत में यह हानिस नहीं होगा भाई। उसके बाद साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर कोई शख्स जो है फ़ेल मुतअद्दी के साथ लाम इख्तिसास जिक्र कर दे, तो ये लाम इख्तिसास वो फेल के साथ जिक्र करेगा या मफूल के साथ, यानी मफूल से पहले जिक्र करेगा या मफूल के बाद, अगर मफूल से पहले जिक्र कर रहा है तो इसका मतलब है ये फेल के साथ जिक्र कर रहा है, और अगर मफूल के बाद जिक्र कर रहा है मालूम हो ये इख्तिसास इस मफूल का है, और ये लाम इख्तिसास जो है जमीर पर दाखिल हुआ है, मसलन एक आदमी दूसरे से कहता है इन बेअतु लका हादा सौबा फमरअतुहु तालिकुन, इन बेअतु लका, देखो ये लाम इख्तिसास है जो ये फायदा देता है कि एक चीज खास है दूसरी चीज के साथ, और ये काफ जमीर पर दाखिल हो रहा है, तो ये जिस पर लाम इख्तिसास दाखिल हुआ ये है महलूफुन अलै, जिससे ये शख्स बात कर रहा है, जिसके लिए ये कसम खा रहा है, लिहाजा अगर फेले मुतअद्दी इसने जिक्र किया कलाम के अंदर, और वो फेले मुतअद्दी ऐसा है जिसके अंदर नियाबत जारी होती है, यानी जिसमें दूसरे को वकील बनाया जा सकता है, तो इस सूरत में अगर लाम फेल के साथ है तो इस फेल का इख्तिसास चाहिए महलूफुन अलै के साथ, यानी मुखातब के साथ, और अगर ये लाम जो है मफूल बिही के बाद है, यानी आयन के बाद है, एक जात के बाद है, फेल के बाद नहीं है बल्कि जात के बाद है, तो इस सूरत में फिर इस जात का इख्तिसास चाहिए महलूफुन अलै के साथ, यानी ये चीज उसकी ममलूक हो। फेल का इख्तिसास कैसे होता है कि किसी का वकील बनकर काम किया जाए, तो यह फेल खास तौर पर आप उसी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। और इसी तरह किसी ऐन का इख्तिसास कैसे होता है कि वो ऐन वो चीज उसकी ममलूका हो गई। तो अगर लाम फेल के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर तो इस फेल का इख्तिसास चाहिए महलूफुन अलै के साथ, यानी महलूफुन अलै के कहने पर उसके वकील बनकर यह फेल करेगा तो यह हानिस हो जाएगा, वरना हानिस नहीं। और अगर ये लाम ऐन के साथ यानी मफूल बिही के साथ है तो इस मफूल बिही का इख्तिसास चाहिए महलूफुन अलै के साथ, यानी ये मफूल बिही अगर ये महलूफुन अलै का ममलूक है तो फिर इस सूरत में इस फेल में ये हानिस होगा, वरना हानिस नहीं होगा। तो ये तफसील उस फेल में है जिसमें नियाबत जारी होती है, क्योंकि जब नियाबत जारी होती है तो इसमें वकील बनाया जा सकता है, जब वकील बनाया जा सकता है तो इसका इख्तिसास किसी दूसरे के साथ हो सकता है, यानी वो मुवक्किल के साथ, किसके साथ, मुवक्किल के साथ। लेकिन अगर फेल ऐसा है कि उसमें नियाबत जारी नहीं होती, फिर लाम इख्तिसास चाहे मफूल पर मुकद्दम हो या मफूल के बाद हो, दोनों सूरतों में इस ऐन का इख्तिसास महलूफुन अलै के साथ होगा तो यह हानिस हो जाएगा। फिर ऐन का इख्तिसास होगा, चाहे लाम मुकद्दम हो मफूल बिही पर चाहे मुअख्खर, क्योंकि फेल का तो वहां इख्तिसास ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर तो नियाबत जारी हो ही नहीं सकती, उसके अंदर तो किसी को वकील बनाया ही नहीं जा सकता। तो फिर इस सूरत में चाहे लाम उस मफूल पर मुकद्दम हो चाहे मुअख्खर हो, दोनों सूरतों में वो जो मफूल बिही है उसका इख्तिसास हुआ महलूफुन अलैह के साथ, यानी उसकी ममलूक चीज हुई, तो फिर हानिस होगा वरना हानिस नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा एक शख्स ने दूसरे से कहा, इन बियातुल्लका हादस सौ बफम रतुहू तालिकुन, अगर मैंने आपके लिए यह कपड़ा बेचा तो उसकी बीवी को तलाक है। इन बियातुल्लका, तो देखो लाम फेल के साथ आ रहा है और बै ऐसा फेल है जिसमें नियाबत जारी होती है, इसमें आप दूसरे को वकील बना सकते हैं कि मेरे लिए यह चीज खरीद कर ले आओ, तो यहां फेल का इख्तिसास है। अगर मैंने आपके लिए यह फेल किया, और फेल का इख्तिसास कैसे होता है, वकील बनकर, तो यानी अगर मैंने आपका वकील बनकर यह कपड़ा बेचा तो फिर साबो आदमी कहता है फिर मेरी बीवी को तलाक है। तो इस सूरत में अगर वकील बनकर कपड़ा बेचेगा तो हानिस होगा, अगर वकील बनकर कपड़ा नहीं बेचा तो हानिस नहीं होगा। मसलन उस दूसरे शख्स ने यह कपड़ा इसी के कपड़ों में छुपा दिया और इसको अब पता ही नहीं है यह कसम खाने वाले को कि यह फलां का कपड़ा है, और यह उस कपड़े को बेचता है, तो यह अब कपड़े को बेच रहा है लेकिन उसके लिए नहीं बेच रहा, यानी उसका वकील बनकर नहीं बेच रहा क्योंकि इसको इलम ही नहीं है, तो इस सूरत में यह खानिस नहीं होगा। लेकिन अगर इसने कहा इन बियातु सौबन लका, इन बियातु सौबन लका ऐ सौबन ममलूकन लका, ये देखो लाम सौब के साथ है तो ये सौब ममलूक होना चाहिए उस मुखातब का। इन बियातु सौबन लका ऐ सौबन ममलूकन लका, अगर मैंने आपका ममलूक कपड़ा बेचा तो फिर वो कहता है मेरी बीवी को तलाक है। तो इस सूरत में उस मुखातब के ममलूक कपड़े को जब ये बेचेगा ये खानिस हो जाएगा, चाहे उसके कहने पर बेचे चाहे उसके कहे बगैर बेचे, चाहे इसको इलम हो चाहे इलम ना हो, क्योंकि हर सूरत में जब ये उस कपड़े को बेचेगा तो इसने महलूफुन आले के ममलूक कपड़े को बेचा है, तो शर्त पाई गई, जब शर्त पाई गई तो वो जजा भी वाकई हो जाएगी। जबकि इसके मुकाबले में अगर फेल ऐसा है कि इसमें नियाबत जारी नहीं होती तो इस सूरत में उस मफूल बिही का इख्तिसास चाहिए महलूफुन अलैह के साथ। जैसे एक शख्स दूसरे से कहता है इन अकल तू लका तआमन, तो ये लाम को अकल यानी खाने के फेल के साथ जिक्र किया, लेकिन खाने के फेल में तो नियाबत जारी नहीं होती, कोई वकील बनकर आपकी तरफ से खाना नहीं खा सकता, उसके खाने से आपका पेट नहीं भरेगा भाई, तो खाना खाने में नियाबत जारी नहीं होती, तो फिर इस सूरत में चाहे इस लका को ताम पर मुकदम करे चाहे मुअख्खर करे, दोनों सूरतों में ये ताम जो है महलूफुन अलैह का ममलूक नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेल के अंदर तो यहां इख्तिसास जारी हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ वो मफूल बिही के अंदर जो है इख्तिसास जारी हो सकता है, तो वही मुराद लिया जाएगा। तो दूसरे का ममलूका खाना खाएगा तो ये हानिस होगा, और अगर ये खाना दूसरे का ममलूक नहीं है तो फिर इसके खाने से वो हानिस नहीं होगा। सूरत समझ में आ गई। और इसी तरह एक शख्स ने कहा कि मेरा यह गुलाम आजाद है, अगर मैंने इसको बेचा, फिर इसने इस गुलाम को किसी दूसरे के हाथ बेच दिया, बै कर ली, तो भी यह गुलाम आजाद नहीं होगा, क्योंकि अब यह गुलाम इसकी मिल्कियत से ही निकल चुका है, मुश्तरी इसका मालिक बन गया है। लेकिन अगर इस गुलाम को उसने बेचा खियारे शर्त के साथ, और खियारे शर्त रखा बाय ने, बेचने वाले ने, तो आपको मैंने बतलाया था कि अगर बाय खियारे शर्त रखे तो बिल इत्तेफाक मबीहा उसकी मिल्कियत से नहीं निकलता। तो अगर इसने खियारे शर्त के साथ बेचा है तो फिर गुलाम अभी भी इसकी मिल्कियत में है, लिहाजा खियारे शर्त के साथ बेचते ही गुलाम आजाद हो जाएगा। जबकि इसके मुकाबले में अगर खियारे शर्त मुश्तरी ने रखा तो फिर उस सूरत में मैंने बताया था कि साहिबैन और इमाम साहब का इख्तिलाफ है। साहिबैन के नजदीक अगर मुश्तरी खियारे शर्त रखेगा तो मबीआ मुश्तरी की मिल्क में दाखिल हो जाता है, बाय की मिल्क से निकला और मुश्तरी की मिल्क में दाखिल हो गया। जबकि इमाम साहब के नजदीक कि जब खियारे शर्त मुश्तरी रखे तो मबीहा बाय की मिल्क से तो निकल आया लेकिन मुश्तरी की मिल्क में दाखिल नहीं है, वरना तो दोनों बदलैन का मालिक एक ही आदमी को करार देना पड़ेगा, मुश्तरी समन का भी मालिक है और मुश्तरी मबीया का भी मालिक है। तो लिहाजा इमाम साहब फरमाते हैं कि जब खियारे शर्त मुश्तरी रखे तो मबीया बाय की मिल्क से तो निकल आता है लेकिन मुश्तरी की मिल्क में दाखिल नहीं होता। सूरत समझ में आ रही है। तो इस सूरत में अगर मुश्तरी ने यह कसम खाई कि अगर मैंने इस गुलाम को खरीदा तो यह आजाद है, और फिर मुश्तरी ने खियार शर्त के साथ इस गुलाम को खरीदा, तो साहिबैन के नजदीक मुश्तरी मालिक बना और मालिक बनते ही यह गुलाम आजाद हो गया, क्योंकि इसने भी क्या कहा था, अगर मैं यह गुलाम खरीदूं तो वो आजाद है। जबकि इमाम साहब के नजदीक तो मुश्तरी मालिक नहीं बनता, लेकिन इस मसले में वो भी फरमाते हैं कि मुश्तरी मालिक बनेगा और गुलाम आजाद हो जाएगा। वो इस मुअल्लक को कियास करते हैं मुनज्जस पर। एक मुअल्लक चीज होती है, एक मुनज्जस। मुअल्लक वो है जिसे किसी फेल के साथ मुअल्लक कर दिया जाए। खावन बीवी से कहता है अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो ये तलाक वाके नहीं की उसने, बल्कि इसको मुअल्लक कर दिया है। बीवी उस घर में जाएगी तो तब तलाक वाके होगी। और एक है मुनज्जस, उसी वक्त वाके कर देना, पूरा कर देना। खावन बीवी से कहता है तुझे तलाक है, अब ये तलाक वाके हो गई, इसने तलाक को मुअल्लक नहीं किया बल्कि मुनज्जज कर दिया है। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि यहां मुश्तरी ने खियार शर्त के साथ खरीदा है और उसने इस गुलाम की आजादी को मुअल्लक किया था, और मुअल्लक भी मुनज्जज की तरह होता है। लिहाजा अगर ये मुश्तरी एक गुलाम को खरीदे, कि कोई और गुलाम है, मुश्तरी एक गुलाम खरीदता है, मुश्तरी ने कोई तालीक नहीं की हुई, मुश्तरी उस गुलाम को खियार शर्त के साथ खरीद लेता है। अब मुश्तरी को इख्तियार है, तीन दिन तक वो चाहे तो इस बैग को फसख कर सकता है, लेकिन वो इस गुलाम को फौरन आजाद कर देता है कि तुम मेरी तरफ से आजाद हो, तो भी तो इस सूरत में बिल इत्तेफाक ये गुलाम आजाद हो जाएगा, क्योंकि जब मुश्तरी ने गुलाम आजाद किया तो मालूम हुआ उसके कहने का मतलब यह है कि मैंने अपने फसख के इख्तियार को खत्म कर दिया, मैंने बैग नाफिज कर दी, मुझे इख्तियार था तीन दिन तक मैं इजाजत दूं या इजाजत ना दूं। तो इस गुलाम को आजाद करना यह दलील है इस बात की कि वो इस बैग की इजाजत दे रहा है, इसको नाफिज कर रहा है। अब वो इस बैग को फसख नहीं करना चाहता तो मुनज्जज एताक करेगा तो फौरन वाके हो जाएगा, मालूम हो वो बैग को नाफिज कर रहा है। तो जब मुश्तरी खियार शर्त के साथ खरीदे तो जब वो मुनज्जज एताक कर सकता है तो फिर यहां पर मुअल्लक एताक भी हो जाएगा। जैसे ही खरीदेगा तो फौरन ही मिल्कियत साबित होगी और यह गुलाम आजाद हो जाएगा। उसके बाद साहिब हिदाय ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर एक आदमी कहता है कि अगर मैं अपने इस गुलाम या बांदी को न बेचूं तो मसलन मेरी बीवी को तलाक है, और फिर इसने इस गुलाम या बांदी को आजाद कर दिया या मुदब्बर बना दिया, तो इस सूरत में खानिस हो गया और फौरन तलाक वाके हो गई। वजह यह कि अब ये गुलाम ये बांदी आजाद हो चुके हैं या मुदब्बर बन चुके हैं, तो अब ये बैअ का महल ही ना रहे, तो अब बैअ ना पाई गई, अब बैअ नहीं हो सकती, तो लिहाजा ये हानिस हो गया। हानिस हो गया क्योंकि इसने भी क्या कहा था, अगर मैंने ना बेचा तो फिर मेरी बीवी को तलाक है। बात समझ में आ गई। और उसके बाद फिर साहिब हिदायत ने मसला जिक्र फरमाया कि एक शख्स को उसकी बीवी कहती है कि तूने मेरे ऊपर निकाह कर लिया है, तू मेरे ऊपर एक सौकन को ले आया है, और खावंद उसका इनकार कर रहा है, तो खावंद कहता है कुल उम्रातीन ली तालिकुन सलासन, मेरी हर बीवी को तीन तलाक है। तो इस सूरत में याद रखो इस औरत को भी तलाक हो जाएगी जाहिर रिवायत के मुताबिक, क्योंकि इसने खावंद ने आम अल्फाज इस्तेमाल किए कि मेरी हर बीवी को तीन तलाक है, और ये भी इसकी बीवियों में से है तो इसको भी तीन तलाकें हो जाएंगी। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, ये जो कलाम इसने जिक्र किया है ये बीवी को राजी करने के लिए है, और ये उस औरत के सवाल के जवाब में उसने ये कलाम जिक्र किया है, और जवाब जो है वो सवाल के मुताबिक होता है, तो गोया उसने यूं कहा है कि तेरे अलावा मेरी तमाम बीवियों को तलाक है। लफ्ज तो यह इस्तेमाल किया कि मेरी तमाम बीवियों को तीन तलाकें हैं, लेकिन कहने का उसका मतलब यह है कि तेरे अलावा मेरी जितनी बीवियां हैं उनको तीन तलाकें हैं। तो इस सूरत में इसके अलावा बीवियों को तलाक होगी, इस बीवी को तलाक नहीं होगी। लेकिन उसका जवाब साहिब हिदायत ने जिक्र फरमाया कि भाई यहां पर इसने कुल्लुन का लफ्ज बढ़ा दिया है, लिहाजा अब इसको जवाब करार नहीं दिया जा सकता, यह तो इसने आम लफ्ज इस्तेमाल कर लिया जिसमें सारी बीवियां दाखिल हो जाती हैं, लिहाजा इस सूरत के अंदर इस बीवी को भी तलाक हो जाएगी। और बाकी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस कलाम का मकसद बीवी को राजी करना है, तो हम कहते हैं कि इस कलाम का मकसद बीवी को राजी करना भी हो सकता है, और इस कलाम का मकसद बीवी को और ज्यादा वहशत और परेशानी में मुब्तला करना भी हो सकता है कि वो खावंद गुस्से में आकर उस बीवी को तीन तलाकें दे रहा है कि तुम मुझे एक ऐसी चीज से मना कर रही हो जिसकी शरीयत ने मुझे इजाजत दी है। तो मालूम हुआ इस कलाम के अंदर उस खावंद का मकसद उस बीवी को राजी करना भी हो सकता है और उसको वहशत ज्यादा करना भी हो सकता है। तो मकसद के अंदर तरद्दुद आ गया, जब मकसद के अंदर तरद्दुद आ गया तो लिहाजा इस तलाक को इस बीवी के अलावा और बीवियों के साथ मुकैद नहीं किया जा सकता। और मैंने बतलाया था कि बास की बार फुकाहा और आइम्मा ने इमाम अबू यूसुफ रहमल्ला के कौल को तरजीह दी है, चुनाचे इमाम सरखसी रहमल्ला ने भी इमाम अबू यूसुफ रहमल्ला के कौल को तरजीह दी है भाई। और बाजों ने फिर दोनों रिवायतों के अंदर तत्बीक दी कि अगर खावन जो है बीवी को यह जुमला बगैर गुस्से के कह रहा है तो मालूम हो वो बीवी को राजी करना चाहता है, तो इस बीवी के अलावा और बीवियां मुराद होंगी। और अगर खावन जो है वो गजब की हालत में है तो फिर इसका मतलब है कि वो इस बीवी को और ज्यादा वहशत ज्यादा करना चाहता है, तो इस सूरत में फिर इस बीवी को भी तीन तलाकें हो जाएंगी। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। बाबुल यमीन फिल हज व सलाती व सौम, यह बाब है उस कसम के बारे में जो हज के बारे में हो और नमाज के बारे में हो और रोजे के बारे में हो। भाई कोई शख्स अगर यमीन के अंदर नमाज रोजा हज वगैरह को जिक्र करता है तो उसका क्या हुक्म है, अब वो तफसील बयान फरमाएंगे साहिब हिदाया। काला, इस काला से मुराद इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह हैं। काला व मन काला व हुआ फिल काबती औ फी गैरिहा अलैयल मश्यु इला बैतिल्लाह तआला औ इलल काबती फअलैहि हज्जतुन औ उमरतुन माशिया व इन शाअ रकिब व अहरा कदमन। भाई याद रखो, ये लोगों के अंदर मुतआरफ था कि वो अपने ऊपर हज या उमरे को लाजिम करना चाहते, यानी हज या उमरे की मन्नत मानना चाहते, तो फिर इस सूरत में वो कहते थे कि मेरे ऊपर बैतुल्लाह की तरफ चलना वाजिब है। अलैयल मश्यु इला बैतिल्लाही, मेरे ऊपर वाजिब है, मशा यमशी का माना है पैदल चलना, अलैयल मश्यु इला बैतिल्लाही, मेरे ऊपर बैतुल्लाह की तरफ पैदल चलना वाजिब है। या अलैयल मश्यु इलल काबती, मेरे ऊपर खाना काबा की तरफ पैदल चलना वाजिब है। तो ये लोगों के अंदर मुतआरफ था इन अल्फाज के साथ, अपने ऊपर वो हज या उमरे को लाजिम करते थे जी। हज या उमरे को लाजिम करते थे, तो इसमें दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो वो मश्य उनको जिक्र करे पैदल चलने को, और दूसरे बैतुल्लाह को जिक्र करे यानी खाना काबा को। तो दोनों चीजें होंगी तो फिर उस शख्स पर हज या उमरा लाजिम हो जाएगा, और अगर दोनों में से एक भी चीज कम हो गई, यानी चलने को तो जिक्र किया लेकिन खाना काबा या बैतुल्लाह को जिक्र नहीं किया, या खाना काबा या बैतुल्लाह को तो जिक्र किया लेकिन पैदल चलने को जिक्र नहीं किया, तो फिर इस सूरत में याद रखो उस पर हज या उमरा लाजिम नहीं होगा। वजह यह कि लोगों के अंदर मुतआरफ ही इन दो लफ्जों के साथ था कि वो पैदल चलने को भी साथ जिक्र करते और खाना काबा को भी साथ जिक्र करते थे, तो ये लोगों में मुतआरफ था, मशहूर था, राइज था, इस तरीके से वो अपने ऊपर हज या उमरे को लाजिम किया करते थे, इस तरीके से वो हज या उमरे की मन्नत माना करते थे। तो इसमें कितनी चीजों का जिक्र जरूरी है, दो चीजों का, एक पैदल चलने का जिक्र और एक खाना काबा या बैतुल्लाह का जिक्र होना चाहिए। बात समझ में आ गई। लिहाजा अब आप मुझे मसला बताइए, एक शख्स कहता है मेरे ऊपर जहाब इला बैतुल्लाह वाजिब है, बैतुल्लाह की तरफ जाना वाजिब है, तो अब आप क्या हुक्म लगाएंगे, इस पर हज या उमरा वाजिब हुआ या नहीं हुआ? हज या उमरा वाजिब नहीं हुआ, क्योंकि इसने जहाब जिक्र किया है, मश्यून पैदल चलने को जिक्र नहीं किया। भाई बात समझ में आ गई। या एक शख्स कहता है अलैयल मश्यु इलल मस्जिदिल हरामी, मेरे ऊपर मस्जिदुल हराम की तरफ पैदल चलना वाजिब है। मस्जिदुल हराम वो मस्जिद जिसके अंदर बैतुल्लाह यानी खाना काबा वाकई है। भाई तो अब इसने क्या जिक्र किया, मेरे ऊपर मस्जिदुल हराम की तरफ पैदल चलना वाजिब है, आप क्या हुक्म लगाएंगे, इस पर हज या उमरा वाजिब हुआ या वाजिब नहीं हुआ? वाजिब नहीं हुआ भाई। क्यों? क्योंकि मैंने बतलाया दो चीजें हैं, एक पैदल चलना और दूसरा खाना काबा या बैतुल्लाह को जिक्र करे। इसने तो मस्जिदुल हराम जिक्र की है, खाना काबा को जिक्र नहीं किया। और पिछली मिसाल में उसने कहा था जहाब इला बैतिल्ला, बैतुल्ला की तरफ जाने को जिक्र किया था, और मैंने बतलाया कि जाना नहीं बल्कि पैदल जाने को जिक्र करे वो जी। तो कितनी चीजों का जिक्र जरूरी, दो चीजों, क्या क्या? बैतुल्ला एक तो बैतुल्लाह या खाना काबा को जिक्र करे और दूसरा मशी यानी पैदल चलने को। जी अब देखिए भाई कहते हैं काला इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं वह मन काला और जिस शख्स ने कहा वह हुआ फिल काबती औ फी गैरिहा और हाल यह है कि वो खाना काबा के अंदर है औ फी गैरिहा या किसी और जगह में है उस वो शख्स कहता है अलैयल मश्यु इला बैतिल्लाह तआला कि मेरे ऊपर बैतुल्लाह की तरफ पैदल जाना लाजिम है और इलल काबती ये लफ्ज बोलता है कि मेरे ऊपर खाना काबा की तरफ जाना लाजिम है फअलैहि हज्जतुन औ उमरतुन माशिया तो इस पर एक हज या एक उमरा वाजिब है माशियान पैदल इसको पैदल एक हज या उमरा करना पड़ेगा और अगर यह सवार होकर करना चाहता है पैदल चलना मुश्किल है लेकिन इस पर वाजिब तो हो चुका है तो फिर इस सूरत में सवार होकर भी यह जा सकता है लेकिन फिर वहां जुर्माने के तौर पर एक जानवर की कुर्बानी करना पड़ेगी। मसला समझ में आया? क्या मैंने मसला जिक्र किया कि अरबों के हां यह मुतआरफ था राइज था वो पैदल चलने और खाना काबा को जिक्र करते थे हज या उमरे को अपने ऊपर लाजिम करने के लिए। चुनाचे इसीलिए देखो जरा साहिब हिदाया की इबारत पर गौर करो काला व मन काला व हुआ फिल काबती औ फी गैरिहा चाहे वो खाना काबा के अंदर खड़े होकर कह रहा है अलैयल मश्यु इला बैतिल्लाही भाई बैतुल्लाह के अंदर तो तुम खड़े हो और फिर कह रहे हो अलैयल मश्यु इला बैतिल्लाही तो इससे भी हज उमरा उस पर लाजिम हो जाता था क्योंकि इसका लुगवी माना यहां मुराद नहीं होता था कि बैतुल्लाह की तरफ मैं चल के जाऊंगा क्योंकि बैतुल्लाह के अंदर तो वह मौजूद है फिर भी यह जुमला कहेगा तो क्या लाजिम हो जाएगा हज या उमरा क्योंकि यह कलाम मजाजन किस लिए इस्तेमाल होता था हज या उमरे को लाजिम करने के लिए इससे सिर्फ चलना मुराद नहीं होता था तो बैतुल्लाह के अंदर भी खड़े होकर यह कहेगा ये अल्फाज मजाज हैं हज या उमरे को लाजिम करने से तो बैतुल्लाह के अंदर भी खड़े होकर यह अल्फाज कहेगा तो भी हज या उमरा इस पर लाजिम हो जाएगा। तो इसीलिए इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने जामे सगीर के अंदर यह खाना काबा में होने की भी कैद जिक्र कर दी है ये जो मतन में आ रही है कि वह मन काला वह हुआ फिल काबती औ फी गैरिहा चाहे वह खाना काबा के अंदर ही क्यों ना हो फिर भी उस पर हज या उमरा लाजिम हो जाएगा। अब फिर तर्जमा देख लीजिए काला इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं वह मन काला वह हुआ फिल काबती और जिस शख्स ने कहा इस हाल में कि वह खाना काबा के अंदर है और फी गैरिहा या खाना काबा के अलावा जगह में है अलैयल मश्यु इला बैतिल्लाह तआला औ इलल काबती के मुझ पर बैतुल्लाह की तरफ जाना वाजिब है या उसने कहा कि मुझ पर खाना काबा की तरफ पैदल जाना वाजिब है फअलैहि हज्जतुन औ उमरतुन माशिया तो उस शख्स पर एक हज या उमरा होगा पैदल यानी ये इस पर लाजिम होगा वह इन शाह रकीबा और अगर चाहे तो यह सवार हो जाए वह अहरा का दमन और खून बहाए भाई यानी कुर्बानी करे अहरा का युहरी को इहराकन का क्या माना है पानी या खून का जमीन पर बहा देना कुर्बानी के अंदर भी आप जानवर को जिबा करते हैं तो उसका खून जमीन पर बहता है तो ये इहराक दम किनाया है किससे कुर्बानी से कुर्बानी से तो एक जानवर की कुर्बानी करे अगर ये सवार होकर जाता है क्योंकि इसने मन्नत तो पैदल जाने की मानी थी भाई तो कहते हैं वह इन शाह रकीबा और अगर चाहे तो यह आदमी सवार हो जाए वह अहरा का दमन और खून बहाए यानी कुर्बानी करे। याद रखो यह असल में है अरा का यूरीको बाबे फाल है अरा का यूरीको इराकतन इसका माना है जमीन पर कोई चीज बहा देना जैसे पानी वगैरह या खून जमीन पर बहा दिया या गिरा दिया तो यह असल लफ्ज है अरा का। फिर कभी कभार शुरू के हमजा की जगह हा ले आते हैं और यूं कहते हैं हराका युहरीकु हराका युहरीकु तो हमजा की जगह कभी हा ले आते हैं और कभी दोनों को इकट्ठा कर देते हैं अहराका युहरीकु तो तीनों तरह यह इस्तेमाल होता है। तो कहते हैं वह इंशा अरकीबा व अहरा का दमन और अगर चाहे तो ये सवार हो जाए वह अहरा का दमन और खून बहाए यानी कुर्बानी करे वह फिल कियास इला या जमुहू शई उन और कियास में तो उस पर कोई चीज लाजिम नहीं है। भाई इधर देखिए मैंने आपको बतलाया था मन्नत के अंदर इंसान को इबादत वगैरह की मन्नत मानता है लेकिन मन्नत तब उनाकिद होगी जब वो इबादत जिंदगी में कभी वाजिब या फर्ज भी हो। अगर ऐसी इबादत की मन्नत मानी तो मन्नत मुनाकिद हो गई, इसको पूरा करना पड़ेगा। और अगर ऐसी मन्नत मानी जो जिंदगी में कभी फर्ज या वाजिब नहीं, तो फिर इस सूरत में ये मन्नत मुनाकिद ही नहीं हुई, इसका पूरा करना कोई जरूरी नहीं है भाई। जैसे एक शख्स मन्नत मानता है कि अगर मेरा यह काम हो गया तो मैं फलां बाबा जी की कब्र पर एक चादर चढ़ाऊंगा। देखो अब यह कब्र पर चादर चढ़ाना यह तो कोई इबादत नहीं है, लिहाजा मन्नत मुनाकिद ही नहीं हुई। तो मन्नत के मुनाकिद होने के लिए इबादत होना भी जरूरी है, और नीज व इबादत किसी वक्त वाजिब या फर्ज भी होनी चाहिए। लिहाजा एक आदमी कहता है कि अगर मेरा यह काम हो गया तो मैं 10 रकात नफल पढ़ूंगा, यानी 10 रकात नमाज पढ़ूंगा। और नमाज आप जानते हैं कि नमाज फर्ज भी है, हर रोज 5 नमाजें इंसान पर फर्ज हैं, तो यह मन्नत सही है भाई। या एक शख्स कहता है कि अगर मेरा यह काम हो गया तो मैं 10 रोजे रखूंगा। अब देखो ये रोजे जो हैं ये भी रमजान के रोजे फर्ज हैं, तो यह मन्नत भी सही है। या इसी तरह एक शख्स कहता है कि मेरा अगर यह काम हो गया तो मैं 10 सिपारे तिलावत करूंगा। अब देखो यह किरात जो है यह भी नमाज के अंदर फर्ज है, तो यह मन्नत भी सही है। या इसी तरह एक शख्स मन्नत मानता है कि अगर मेरा यह काम हो गया तो मैं फकीरों को 10,000 रुपए फुकरा में तकसीम करूंगा। अब फुकरा पर सदका, देखो जकात इंसान पर लाजिम है, फर्ज है, तो मालूम हो ये मन्नत भी सही है। एक शख्स कहता है अगर मेरा यह काम हो गया तो फिर मैं 10,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, तो यह मन्नत भी सही हो गई। वजह यह कि उलमा लिखते हैं कि जिंदगी भर में कम अज कम 1 मरतबा दुरूद पढ़ना इंसान पर फर्ज है, क्योंकि कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तो ये अमर आ गया, और अमर किस लिए आता है, वजूब के लिए। तो कम से कम जिंदगी में 1 मरतबा दुरूद का पढ़ना लाजिम है भाई। और इसी तरह अगर एक शख्स कहता है कि अगर मेरा यह काम हो गया तो मैं 50,000 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ूंगा, तो याद रखो फिर इस सूरत में यह मन्नत नहीं हुई, क्योंकि सुबहान अल्लाह अगरचे इबादत है, अल्लाह की पाकी बयान कर रहा है, लेकिन यह किसी भी मौका पर सुबहान अल्लाह कहना फर्ज या वाजिब नहीं। हत्ता के नमाज में भी आप सुबहान रब्बी अल आला और सुबहान रब्बी अल अजीम जो पढ़ते हैं यह सुन्नत है, वाजिब या फर्ज नहीं है। तो मन्नत में क्या जरूरी कि वो इबादत हो, और इबादत भी ऐसी हो जो किसी वक्त फर्ज या वाजिब हो। इसके अलावा कोई मन्नत मानता है तो वो मन्नत मुनाकिद ही नहीं हुई, उसका करना उस शख्स पर लाजिम नहीं है भाई। तो लिहाजा बात ये चल रही थी, इस शख्स ने कहा है कि मेरे ऊपर बैतुल्लाह की तरफ पैदल चलना वाजिब है, तो कयास तो यह तकाजा करता है इस पर कुछ भी लाजिम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैतुल्लाह की तरफ पैदल जाना यह कोई इबादत नहीं है भाई। बैतुल्लाह की तरफ पैदल जाना कोई इबादत नहीं है। हत्ता कि अगर कोई हज या उम्रे के लिए भी पैदल जाता है तो हज या उम्रा मकसूद है, और हज और उम्रे के अंदर कई अफाल करने पड़ते हैं, मसलन तवाफ भी करना पड़ता है हज में भी और उम्रे में भी। बैतुल्लाह का तवाफ होगा, बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाएं तो यह एक तवाफ है भाई, और हर तवाफ के बाद 2 रकात वाजिबु तवाफ पढ़ने होते हैं, और फिर उसके बाद बैतुल्लाह के साथ ही 2 पहाड़ियां हैं मस्जिदुल हराम के साथ मुत्तसिल भाई, 2 पहाड़ियां हैं सफा और मरवा, इनके दरमियान 7 चक्कर लगाए जाते हैं, इसको सई कहते हैं, इसको सई। तो उमरा जो है वो सिर्फ तवाफ और सई पर मुश्तमिल होता है, तवाफ और सई कर ली तो उमरा मुकम्मल हो गया। और उमरे के लिए भी एहराम शर्त है, जैसे हज के अंदर एहराम शर्त है, जबकि हज हज के अंदर तवाफ भी करना पड़ेगा, सई भी करना पड़ेगी, अराफात भी जाना पड़ेगा, मुजदलिफा भी जाना पड़ेगा, और इसी तरह मीना वगैरह आकर फिर वो शयातीन है उनको कंकरियां भी मारना पड़ेंगी। तो ये हज के अफआल हैं भाई। तो बात चल रही थी पैदल चलने की, कि इस शख्स ने क्या कहा है कि मेरे ऊपर बैतुल्लाह की तरफ पैदल चलना वाजिब है, तो कियास तो यह तकाजा करता है इस पर कोई चीज लाजिम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैतुल्लाह की तरफ पैदल जाना यह कोई इबादत नहीं है। और हत्ता के उमरा और हज उसके अंदर भी अगर कोई शख्स पैदल जाता है तो यह पैदल जाना ज्यादा अजर व सवाब का बाइस तो है, क्योंकि अपने लिए जितनी मशक्कत इबादत में बढ़ा दी उसने उतना ही अजर भी ज्यादा हो गया। तो उमरा और हज जब मकसूद हैं तो उसमें भी जब पैदल हज के लिए या उमरे के लिए जाएगा तो अजर तो बढ़ जाएगा, लेकिन खुद ये फी जाती ही ये पैदल चलना मकसूद नहीं, हज या उम्रे में ये पैदल चलना मकसूद नहीं, तवाफ सही और अरफात जाना वगैरह ये चीजें तो मकसूद होती हैं, लेकिन ये पैदल चलना मकसूद नहीं। तो ये खुद भी इबादत नहीं और इबादतों के अंदर ये खुद मकसूद भी नहीं है, लिहाजा कयास ये तकाजा करता कि ये मन्नत होनी ही नहीं चाहिए, इस आदमी पर कुछ भी लाजिम नहीं होना चाहिए, कुछ भी लाजिम नहीं होना चाहिए। लेकिन उर्फ की वजह से इस शख्स पर हज या उमरा लाजिम होगा, क्योंकि लोगों में यही मुतारफ था, यही राइज था कि इस कौल के जरिए वो अपने ऊपर हज या उमरे को लाजिम करते थे। भाई तो कहते हैं वफिल कियास ला यलज़मुहु शैउन, और कियास के अंदर तो इस मन्नत की वजह से इस आदमी पर कोई चीज लाजिम नहीं होनी चाहिए, लिअन्नहु इल्तज़मा मा लैसा बिक़ुर्बतिन वाजिबतिन, इसलिए क्योंकि इसने अपने ऊपर इल्तिजाम किया है ऐसी चीज को जो कुर्बत वाजिबा नहीं। कुर्बत यानी इबादत, इबादत कुर्बत है ना, इसकी वजह से इंसान के दराजात बुलंद होते हैं, वो अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह से उसका ताल्लुक बढ़ता है, तो इबादत क्या है? कुर्बत। तो ये जो इसने जो अपने ऊपर पैदल चलने को लाजिम किया है ये कोई कुर्बत वाजिबा नहीं, ये इबादत नहीं है। कहते हैं लिअन्नहु इल्तज़मा मा लैसा बिक़ुर्बतिन वाजिबतिन, इसलिए क्योंकि इसने अपने ऊपर लाजिम किया है ऐसी चीज को जो कि कुर्बत वाजिबा नहीं है, वला मकसूदतिन फिल असली, और नीज ये जो पैदल चलना है ये असल के अंदर भी मकसूद नहीं है, यानी हज या उम्रे में भी पैदल चलना मकसूद नहीं होता, और अफाल तो मकसूद होते हैं लेकिन पैदल चलना मकसूद नहीं होता। तो ये कयास ये तकाजा करता है, लेकिन हमने कहा कि बैतुल्ला का हज या उम्रा इससे लाजिम हो जाएगा। अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वह मजहब ना मासूर अन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, और हमारा मजहब जो है ये मनकूल है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से। तो ये नकली दलील जिक्र कर दी साहिब हिदाया, असर का लफ्ज कौल सहाबी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बतलाया था कि हदीस के चार नाम मशहूर हैं, खबर, असर, सुन्नत और हदीस, और ये अल्फाज मुतरादिफ हैं, ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बाज उलमा इनमें फर्क करते हैं। जैसे साहिब हिदाया असर का लफ्ज कौले सहाबी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कहते हैं वह मजहब ना मासूर अन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, और हमारा मजहब जो है ये मनकूल है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से। वली अन्नास तआरफु ईजाब अल हज वल उमरति बिहादल लफ्जी, वली अन्नास तआरफु, इसलिए क्योंकि लोगों में मुतआरफ है, क्या मुतआरफ है? ईजाब अल हज वल उमरति बिहादल लफ्जी, हज या उम्र को वाजिब करना इन लफ्जों से, ये लोगों में मुतआरफ है और राइज है और मशहूर है। फसार कमा इदा काला, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे इस शख्स ने ये कहा है, अलैया ज्यारतुल बैती माशियन, कि मेरे ऊपर बैतुल्ला की जियारत वाजिब है पैदल, फयल जमुहू माशियन, तो उस पर बैतुल्ला की जियारत पैदल वाजिब होगी, वह इन शाह रकीबा, और अगर ये चाहे तो सवार हो जाए, वह अहरा का दमन, और खून बहाए यानी कुर्बानी करे, वह कद जकरना हुफिल मनासिकी, और तहकीक हमने इसको अफाल हज में जिक्र किया है। मनासिक जमा है मनसिक की या मनसक की, और मनसक जो है वो इबादत को कहते हैं, लेकिन आमतौर पर इसका इतलाक जो है अफाल हज पर होता है। हज के अफाल और अरकान को क्या कहते हैं? मनासिक हज। भाई तो साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि ये बात हम मनासिक हज में बयान कर चुके हैं, यानी हिदाया की पहली जिल्द में जहां इबादत का जिक्र आया था वहां हज का भी जिक्र था, तो वहां हमने ये जिक्र किया था। तो कहते हैं वक़द जकर ना हुफिल मनासिकी, तो कहते तहकीक हमने इसको जिक्र किया है मनासिक के अंदर। वलव काला अलैयल खुरूज अवि ज़हाब इला बैतिल्लाह तआला, और अगर वो शख्स ये कहता है अलैयल खुरूज इला बैतिल्लाह या अलैयल ज़हाब इला बैतिल्लाह, तो क्या उस पर हज या उमरा वाजिब होगा या नहीं? भाई वाजिब नहीं होगा, क्योंकि दो चीजों का जिक्र जरूरी था, एक बैतुल्लाह का और एक मशियन का यानी पैदल चलने का। तो कहते हैं वलव काला, और अगर इस शख्स ने कहा अलैयल खुरूज अवि ज़हाब इला बैतिल्लाह ताला, कि मेरे ऊपर बैतुल्लाह की तरफ निकलना या मेरे ऊपर बैतुल्लाह की तरफ जाना वाजिब है, फला शैअ अलैहि, तो इस पर कोई चीज लाजिम नहीं, लिअन्न इल्तिज़ाम अल-हज वल उमरति बिहादल लफ्ज़ गैर मुतआरफिन, इसलिए क्योंकि हज और उम्र का इल्तिजाम करना इन लफ्जों के जरिए गैर मुतआरफिन, ये लोगों में मुतआरफ नहीं है, लोगों में राइज नहीं है। वलव काला अलैयल मश्यु इलल हरामी, और अगर उस शख्स ने कहा कि मेरे ऊपर पैदल चलना वाजिब है, इलल हरामी हरम की तरफ, याद रखो बैतुल्लाह जिस मस्जिद में वाक़े है उसको मस्जिदुल हराम कहते हैं, और इसी बैतुल्ला के इर्द गिर्द चारों तरफ कुछ इलाका है उसको हरम कहते हैं। तो ये जो बैतुल्ला के इर्द गिर्द चारों तरफ एक कुछ मखसूस इलाका है ये सारा हरम है, ये सारा हरम है। तो इस जमीन की भी ताजीम लाजिम है भाई, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह की इबादत के लिए जमीन पर बनाया जाने वाला पहला घर यानी बैतुल्लाह मौजूद है। तो इस हरम के अंदर शिकार वगैरह खेलना मना है भाई, किसी को तकलीफ देना मना है भाई। तो इसी हरम के अंदर बैतुल्लाह भी मौजूद है। तो अगर कोई शख्स ये कहता है अलैयल मश्यु इलल हरामी, मेरे ऊपर हराम की तरफ पैदल चलना वाजिब है, तो कहते हैं इस सूरत में भी उस पर कोई चीज लाजिम नहीं, क्योंकि इसने पैदल चलने को तो जिक्र किया लेकिन साथ बैतुल्लाह को जिक्र नहीं किया बल्कि हराम को जिक्र किया है। और या अगर ये मस्जिदुल हराम को जिक्र करता है तब भी यही हुक्म है कि इस पर कोई चीज लाजिम नहीं। और अगर ये सफा और मरवा को जिक्र करता है कि मेरे ऊपर सफा और मरवा की तरफ पैदल चलना लाजिम है, तो भी कोई चीज इस पर लाजिम नहीं है। बात समझ में आ गई, क्योंकि बैतुल्लाह का जिक्र भी जरूरी था और वो तो इसने नहीं किया। जबकि साहिबान फरमाते हैं नहीं, अगर ये हराम को जिक्र कर दे या मस्जिदुल हराम को जिक्र कर दे तो फिर भी इस पर हज या उमरा लाजिम हो गया। दो चीजें जिक्र होनी चाहिए थी, एक पैदल चलना और एक बैतुल्लाह। तो बैतुल्लाह को अगर जिक्र नहीं भी किया लेकिन हराम को जिक्र कर दिया, बैतुल्लाह भी तो हराम के अंदर ही है, तो हराम को जिक्र करना गोया बैतुल्लाह ही को जिक्र करना है, लिहाजा इस सूरत में भी हज या उमरा लाजिम हो जाएगा, साहिबैन फरमाते हैं। या इसी तरह इस आदमी ने अगर मस्जिदुल हराम को जिक्र किया तो मस्जिदुल हराम तो बैतुल्लाह पर मुश्तमिल है भाई, उसके अंदर बैतुल्लाह है, तो मस्जिदुल हराम को जिक्र करना भी इसी तरह है जैसे बैतुल्लाह को जिक्र कर दिया जाए। ये किसका मजहब है? साहिबैन का। तो साहिबैन फरमाते हैं पैदल चलने के साथ चाहे बैतुल्लाह को खुद जिक्र करे चाहे हराम या मस्जिदुल हराम को जिक्र करे, तमाम सूरतों में इस पर हज या उमरा लाजिम होगा भाई। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, बैतुल्लाह को खुद जिक्र करना जरूरी है, हराम या मस्जिदुल हराम के जिक्र करने से हज या उमरा लाजिम नहीं होगा। तो कहते हैं वलौ काला अलैयल मश्यु इलल हरामी, कि मेरे ऊपर हराम की तरफ पैदल चलना वाजिब है, औ इल सफा वल मरवती, या मेरे ऊपर सफा और मरवा की तरफ पैदल चलना वाजिब है। मैंने आपको बताया सफा और मरवा बैतुल्लाह के साथ दो पहाड़ियां हैं जिनके दरमियान सात चक्कर लगाए जाते हैं हज और उमरे में, और इसको सई कहते हैं भाई। तो जिस शख्स ने कहा कि मेरे ऊपर हरम की तरफ चलना वाजिब है, औ इल सफा वल मरवती, या उसने कहा कि मेरे ऊपर सफा और मरवा की तरफ पैदल चलना वाजिब है, फला शैअ अलैही, तो इस शख्स पर कोई चीज वाजिब नहीं है। वहां दाइंद अबी हनीफा रहमतुल्लाह, ये इमाम साहिब के नजदीक है। वकाल अबू यूसुफ व मोहम्मद रहिमहुमल्लाह, और साहिबैन फरमाते हैं फी कौली ही, उस शख्स के इस कौल के अंदर अलैयल मश्यु इलल हरमी, वो साहिबैन फरमाते हैं ये जो लफ्ज ये जिक्र करता है अलैयल मश्यो इलल हरमी, इसमें हज्जतुन औ उमरतुन, उस पर हज या उमरा लाजिम है। वलौ काला इलल मस्जिदिल हरामी, और अगर उसने कहा मस्जिदुल हराम की तरफ यानी मश्यून इलल मस्जिदिल हराम को उसने जिक्र किया, फहुआ अला हादल इख्तिलाफी, तो वो भी इसी इख्तिलाफ पर है। इमाम साहब के नजदीक कोई चीज लाजिम नहीं और साहिबैन के नजदीक हज या उमरा लाजिम है। लहुमा, साहिबैन की दलील यह है कि अनल हरम शामिलुन अलल बैती, कि हरम जो है वो भी बैतुल्लाह को शामिल है, बिल इत्तिसाल, इत्तिसाल की वजह से कि हरम के अंदर बैतुल्लाह है तो बैतुल्लाह का इत्तिसाल है, बैतुल्लाह जुड़ा हुआ है हरम के साथ, तो हरम को जिक्र करना बैतुल्लाह ही को जिक्र करना है। तो लहुमा, साहिबैन की दलील यह है कि अनल हरम शामिलुन अलल बैति बिल इत्तिसाल, कि हरम भी बैतुल्लाह को शामिल है इत्तिसाल की वजह से, वकदल मस्जिदुल हराम शामिलुन अलल बैति, और इसी तरह मस्जिदुल हराम जो है यह भी बैतुल्लाह को शामिल है, फसार जिक्रुहु कज़िक्रिही, तो इनका जिक्र भी बैतुल्लाह के जिक्र की तरह है, हरम या मस्जिदुल हराम का जिक्र भी बैतुल्लाह के जिक्र की तरह है। बिखिलाफ सफा वल मरवती, बखिलाफ सफा और मरवा के, लिअन्नहा मुनफसिलान अनहु, इसलिए क्योंकि ये दोनों बैतुल्लाह से जुदा हैं। मैंने बताया कि बैतुल्लाह के साथ ही दो पहाड़ियां हैं उसी मस्जिदुल हराम के किनारे पर साथ ही, तो ये बैतुल्लाह से जुदा हैं, लिहाजा सफा और मरवा के जिक्र करने से बैतुल्लाह का जिक्र न हुआ भाई, लिहाजा इस सूरत में बिल इत्तेफाक उस शख्स पर कोई चीज लाजिम नहीं, न इमाम साहिब के नजदीक और ना साहिबैन के नजदीक। तो कहते हैं ली अन्नहुमा मुनफसिलान अनहू, इसलिए क्योंकि सफा और मरवा जो है बैतुल्ला से जुदा हैं। वलहू, अब इमाम साहब की दलील आ गई, वलहू और इमाम साहब की दलील यह है कि अनल्तिजाम अल इहराम बिहादिहिल इबारति गैरु मुतआरफिन। इमाम साहब की दलील यह है कि अनल्तिजाम अल इहरामी, कि अपने ऊपर एहराम को लाजिम करना, भाई देखो हज या उमरा किया जाएगा तो एहराम बांधना पड़ेगा, तो हज और उमरे को लाजिम कर रहा है तो गोया अपने ऊपर एहराम को लाजिम कर रहा है। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि ये जो इसने अल्फाज जिक्र किए, इनके साथ अपने ऊपर एहराम को लाजिम करना गैर मुतारफ है, लोगों में राइज नहीं। लोगों में क्या राइज है कि मशी को भी जिक्र किया जाए और बैतुल्ला को भी जिक्र किया जाए, जबकि हराम सफा मरवा या मस्जिदुल हराम इनको जिक्र करने के साथ अपने ऊपर हज को लाजिम करना यह लोगों में मुतआरफ नहीं है, लिहाजा इसकी वजह से हज या उमरा भी लाजिम नहीं होगा। वह लहू, तो इमाम साहब की दलील यह है कि अनल्तिजाम अल इहरामी बिहादिहिल इबारती गैर मुतआरफिन, के एहराम को अपने ऊपर लाजिम करना इस इबारत के जरिए यह मुतआरफ नहीं है, यानी लोगों में राइज नहीं है। वला यमकिन ईजाबहू बेतबारी हकीकत लफ्जी, और हकीकत लफ्ज के एतबार से भी इसको वाजिब करना मुमकिन नहीं है, लोगों में भी राइज नहीं। भाई वो जो पहले लफ्ज आए थे अलैयल मश्यु इला बैतिल्लाही, वहां हमने हज या उमरे को क्यों लाजिम किया था, लोगों में राइज था, अगर लोगों में राइज ना होता तो फिर उससे तो हज या उमरे पर दलालत नहीं हो रही। भाई बैतुल्ला की तरफ जाने से कोई हज या उमरे का जिक्र तो वहां नहीं है, तो वहां भी जो हमने हज या उमरे को लाजिम किया था क्यों किया था, कि लोगों में मुतआरफ था। तो यहां पर ये लफ्ज जो है कि वो हरम या मस्जिदुल हराम या सफा मरवा को जिक्र करता है, तो लोगों के अंदर इन लफ्जों के साथ अपने ऊपर एहराम को लाजिम करना मुतआरफ नहीं है। और नीज लफ्जों में भी गौर कर लें तो लफ्जों के माना के एतबार से भी यहां हज और उमरे को लाजिम करार नहीं दिया जा सकता। वो क्या कह रहा है, मेरे ऊपर हराम की तरफ पैदल चलना वाजिब है, तो इन लफ्जों की वजह से तो किसी पर हज वाजिब करार नहीं दिया जा सकता। वो जो हमने पहले वाजिब करार दिया था वो तो उर्फ की वजह से वाजिब करार दिया था, तो कहते हैं लिहाजा उर्फ की वजह से भी वाजिब नहीं हो सकता। वला यमकिन ईजाबहू बेतबारी हकीकत लफ्जी, और नीज इसे हराम को वाजिब करना मुमकिन नहीं है हकीकत लफ्ज के एतबार से, कि लफ्जों का यह माना भी नहीं है। फम तना असला, तो असिरे से ही मुमतना हो जाएगा, यानी हज या उमरा वाजिब ही नहीं होगा। भाई आगे देखिए, वमन कल अबदी हुर्रुन इन लम अहुज्जल आमा فقال حججت وشهد شاهد ان عليه انه زحل عام بالكوفه لم يعتق عبده। सूरत मसला ये, एक आदमी ने कहा कि अगर इस साल मैंने हज न किया तो मेरा गुलाम आजाद है, और फिर बाद में कहते हैं मैंने हज किया है इस साल लिहाजा मेरा गुलाम आजाद नहीं। लेकिन दो गवाहों ने गवाही दे दी कि भाई ये इस साल इसने कूफा के अंदर कुर्बानी की थी, हमने खुद देखा इसको कुर्बानी करते हुए, और कूफा तो मक्का से सैकड़ों मील दूर है, और कुर्बानी के अयाम वगैरह इन्हीं में तो अफाले हज सर अंजाम दिए जाते हैं। भाई तो ये कहता है मैंने हज किया है लिहाजा मेरा गुलाम आजाद नहीं, लेकिन उन दो गवाहों ने गवाही दी कि इसने इस साल कूफा के अंदर कुर्बानी की है, तो फुकहा फरमाते हैं इसका गुलाम आजाद नहीं, गवाहों के कौल को नहीं सुना जाएगा बल्कि इसके कौल को सुना जाएगा। भाई वमन قال عبدي حر ان لم احج العام, और एक शख्स कहता है कि मेरा गुलाम आजाद है अगर मैं इस साल हज न करूं, हज या हज का माना हज करना, और आम जो है साल को कहते हैं, कि तो कहता है عبدي حر ان لم احج العام, कि मेरा गुलाम आजाद है अगर मैं इस साल हज न करूं। अल आम आया ना, तो ये वाला मुतायन साल मुराद है। फकाला, तो उस शख्स ने कहा हजज तू, मैंने हज कर लिया है, यानी इस साल मैंने हज कर लिया है। वह शहद शाहिदानी, और दो गवाहों ने गवाही दी अला अन्नहू जहल आम बिल कूफती, जहा युजही तजहिया का माना कुर्बानी करना, और दो गवाहों ने गवाही दी अला अन्नहू जहल आम बिल कूफती, कि इसने इस साल कूफा में कुर्बानी की है, तो लम यातिक अब्दुहू, तो इस शख्स का गुलाम आजाद नहीं होगा। वहां दाइंदा अबी हनीफ अतवा अबी यूसुफा रहिमहुमल्ला, ये शेखैन रहिमहुमल्ला के नजदीक है, ये गुलाम आजाद नहीं होगा। वकाल मोहम्मद रहमल्ला या आतिको, इमाम मोहम्मद रहमल्ला फरमाते हैं गवाहों की गवाही को सुना जाएगा और इससे मालूम हुआ उसने हज नहीं किया लिहाजा उसका गुलाम आजाद हो जाएगा। तो कहते हैं वकाल मोहम्मद रहमहुल्लाह या आतिको, और इमाम मोहम्मद रहमल्ला फरमाते हैं कि उसका गुलाम आजाद हो जाएगा। लिअन्नहादिहि शहादतुन कामत अला अमरी मालूम, इसलिए क्योंकि ये गवाही कायम हुई है एक मालूम अमर पर, एक मालूम मामले पर। वह हुआ तज़हियत, और वह कुर्बानी करना है। वह मिन जरूरत ही इंतफा उल हज, और इसके साथ जरूरी है हज का मुंतफी होना। जब कुर्बानी कूफा में की है तो इसके साथ लाजिम है कि हज नहीं किया, जब यह कूफा में उस दिन मौजूद था। तो कहते हैं वमिन जरूरती हिंतफा उल हजी, और कूफा में कुर्बानी करने के साथ जरूरी है हज का मुंतफी होना। फयात हक का कुछ शर्त, तो शर्त पाई गई। इसने क्या कहा था, अगर मैं हज न करूं तो मालूम हुआ इसने हज नहीं किया, लिहाजा गुलाम आजाद हो गया। वलहुमा, शेखैन रहिमहुमल्ला की दलील यह है कि अन्नहा कामत अला नफी, कि यह गवाही कायम हुई है नफी पर। भाई मैंने आपको जाब्ता बतलाया था, अलबैनत अलल मुद्दई वलयमीन अला मन अनकरा। बैना किसके जिम्मे होती है, मुद्दई के जिम्मे, और कसम किसके जिम्मे होती है, मुनकिर के जिम्मे। तो बैना हमेशा इस बात पर पेश की जाती है, और इनकार पर कसम खाई जाती है, इनकार पर बैना नहीं पेश की जाती। और यहां यह बैना किस चीज पर है, हज न करने पर है, तो ये नफी पर बैना है, और नफी पर तो बैना को कबूल नहीं किया जाता, लिहाजा इसलिए ये बैना कबूल नहीं है। भाई वलहुमा, और शेखैन रहमहुमल्ला की दलील ये है कि अन्नहा कामत अला नफी, कि ये गवाही जो है नफी पर कायम हुई है, तो लिहाजा ये कबूल नहीं की जाएगी। लिअन्न अल मकसूद मिन्हा नफ्युल हज ला इस बात तस्हियती। भाई देखिए इस पर इश्काल होता है कि भाई ये गवाही नफी पर नहीं साबित हुई, वो गवाह ये गवाही नहीं दे रहे कि इसने हज नहीं किया, वो गवाह इस बात पे गवाही दे रहे हैं कि इसने इस साल कूफा में कुर्बानी की है जी। तो ये गवाही तो किस पर है, इस बात पर है। कहते हैं बेशक जाहिर के एतबार से ये गवाही इस बात पर है, लेकिन हकीकत में हज की नफी पर गवाही है, इसलिए क्योंकि कुर्बानी के लिए तो कोई मुतालिब नहीं है, कोई मुतालबा करने वाला नहीं। तो जिक्र बेशक कुर्बानी है, लेकिन यहां मकसूद क्या है, हज की नफी है, तो ये नफी पर गवाही हुई, और नफी पर तो गवाही को कबूल नहीं किया जा सकता। फिर देखिए वलहुमा, शेखैन रहिमहुमल्ला की दलील यह है कि अन्नहा कामत अला नफी, कि यह गवाही नफी पर कायम हुई है। लिअन्न अल मकसूद मिन्हा नफ्युल हज ला इस बात तस्हियती, इसलिए क्योंकि इस गवाही के जरिए मकसूद जो है वह हज की नफी है। ला इस बात तस्हियती, ना कि कुर्बानी को साबित करना। लिअन्नहु ला मुतालिबा लहा, इसलिए क्योंकि कुर्बानी का तो कोई मुतालबा करने वाला नहीं है, कुर्बानी का तो कोई मुतालबा करने वाला नहीं है। भाई उसके लिए तो कोई मुतालबा, कोई मुद्दाई तो हो, फिर उसके बाद ही गवाही पेश की जाएगी। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं लिअन्नहु ला मुतालिबा लहा, इसलिए क्योंकि ये जो कुर्बानी है इसका कोई मुतालबा करने वाला नहीं। जब इसका कोई मुतालबा करने वाला नहीं तो इस पर गवाही को भी नहीं सुना जा सकता। भाई तो यह गवाही कुर्बानी पर ना हुई, बल्कि यह हकीकत में नफी हज पर ही है। भाई तो कहते हैं लिअन्नहु ला मुतालिबा लहा, इसलिए क्योंकि इस कुर्बानी का कोई मुतालबा करने वाला नहीं है। फसारा कमा इदा शहीदु अन्नहु लम यहुज, तो ये इसी तरह हो गया जैसे इन्होंने गवाही दी हो कि इसने हज नहीं किया। ये इसी तरह हो गया जैसे उन्होंने गवाही दी है कि इसने हज नहीं किया, यानी नफी पर ही गवाही हो गई, और जब नफी पर गवाही हुई तो फिर उसको कबूल नहीं किया जाएगा। गवाही तो इस बात के लिए होती है, एक चीज को साबित करने के लिए। गायतुल अमरी अन्नहाद अन्नफिया, इंतहाई बात इस मामले में यह है, यानी हासिल कलाम यह है, हासिल कलाम यह है कि अन्नहाद नफ्या मिम्मा युहीतु इल्मु शाहिद बिही वलाकिन्नहु ला युमय्यिज़ु बैन नफ्यिन व नफ्यिन तयसीरन। भाई याद रखो, ये जो गवाह जब किसी बात की नफी पर गवाही देते हैं तो ये दो किस्म की गवाही हो सकती है। बाज़ औकात गवाह नफी पर जो गवाही दे रहा है इस वजह से कि उसको एक बात अच्छी तरह मालूम है, उसके इलम ने उसका इहाता कर लिया है। गवाह को एक बात अच्छी तरह मालूम है कतई तौर पर, उसके इलम ने उसका इहाता कर लिया है। और एक नफी वो है जिसमें गवाह के इलम ने उस नफी का इहाता नहीं किया। मसलन देखो, मसलन देखो, ये गवाह गवाही दे रहे हैं कि इसने हज नहीं किया, तो ये ऐसी गवाही है जिसका इन गवाहों के इलम ने इहाता किया हुआ है। इन गवाहों को पक्का पता है इसने हज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ऐन उन्हीं दिनों में इसको कूफा के अंदर देखा है भाई। तो इसका हज न करना, गवाहों को इस बात का इलम है, गवाहों को इस बात का इलम है। तो ये ऐसी नफी पर गवाही है कि गवाहों के इलम ने उसका इहाता किया हुआ है, गवाहों को पक्का मालूम है इसने हज नहीं किया। और बाज औकात नफी पर गवाही तो होती है लेकिन गवाहों को पक्का पता नहीं हो सकता। वहां मसलन देखो, जैद के पास एक गाड़ी है, अमर ने आकर दावा कर दिया कि यह मेरी गाड़ी है, तो अमर के पास तो कोई गवाह नहीं, लेकिन जैद जो इनकार कर रहा है कि यह गाड़ी अमर की नहीं है, उसने दो गवाह पेश कर दिए कि काजी साहब ये मेरे पास दो गवाह मौजूद हैं जो जानते हैं कि यह गाड़ी अमर की नहीं है जी। ये गाड़ी अमर की नहीं, तो ये गवाह भी नफी पर गवाही दे रहे हैं, लेकिन ये ऐसी नफी पर गवाही है कि गवाहों का इलम इसका इहाता नहीं कर सकता जी। गवाहों का इलम इसका इहाता नहीं कर सकता भाई। गवाहों को ज्यादा से ज्यादा यह पता होगा कि जैद ने यह गाड़ी खरीदी है जी। या गवाहों को यह पता होगा जैद को किसी और ने यह गाड़ी दी थी जी। लेकिन इन सब चीजों से अमर के मालिक होने की नफी नहीं होती। हो सकता है जिससे भी जैद ने खरीदी है उसने अमर से गाड़ी चोरी की थी जी। या जैद को जिसने तोहफे में दी है, हो सकता है उसने अमर से जबरदस्ती गाड़ी छीन कर ली थी। तवज्जो है, यहां पर जो नफी पर गवाही है इस नफी का इहाता नहीं किया हुआ गवाहों के इलम ने जी। गवाहों को कतई तौर पर यह पता चल ही नहीं सकता कि यह गाड़ी अमर की नहीं है। लेकिन वो जो दूसरी सूरत थी जब वो कूफा में था हज के दिन, तो यहां पर भी नफी पर गवाही है लेकिन गवाहों के इलम ने इहाता किया हुआ है कि इसने कतई तौर पर इस साल हज नहीं किया, क्योंकि यह ऐन उन दिनों में कूफा के अंदर था जी। तो मालूम हुआ नफी पर जो गवाही है वो दो किस्म की हो सकती है। एक वो नफी है जिसमें गवाहों के इलम ने उस नफी का इहाता किया हुआ है, और एक वो नफी है जिसमें गवाहों के इलम ने उसका इहाता नहीं किया हुआ, यानी गवाहों को कतई तौर पर पक्का पता चल ही नहीं सकता। चुनाचे बास फुकहा फरमाते हैं अगर गवाह ऐसी नफी पर गवाही दें जिसका इहाता उनका इलम कर ले, यानी जिसका उन्हें कतई तौर पर पता है, तो फिर उनकी गवाही कबूल की जाएगी। और अगर वो गवाह ऐसी नफी पर गवाही दें कि इनका इलम उस नफी का इहाता नहीं कर सकता, तो फिर उनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। तो बाज उलमा ने यह फर्क किया है, लेकिन कहते हैं अगर यह कह दिया जाए कि बाज नफी पर गवाही कबूल है और बाज नफी पर गवाही कबूल नहीं, तो लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। लिहाजा मुतलकन नफी पर जो भी गवाही होगी उसको कबूल नहीं किया जाएगा लोगों की आसानी के लिए जी। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं गायतुल अमरी, मामले की इंतहा यह है, यानी यूं कहें हासिल कलाम यह है कि अन्नहाद अन्नफिया, कि ये वाली जो नफी है मिम्मा युहीत इल्मु शाहिदी बिही, ये उन चीजों में से है कि जिसका इहाता किया हुआ है इस गवाह के इलम ने। वलाकिन्नहु ला युमय्यिज़ु बैन नफ्यिन व नफ्यिन, लेकिन फर्क नहीं किया जाएगा एक नफी और दूसरी नफी में तयसीरन, आसानी के लिए, वरना तो लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे भाई कि किस नफी में गवाही कबूल है और किस नफी में गवाही कबूल नहीं है भाई। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, व मन हलफला यसूमु फनव सौम व सौम सातन सुम अफ्तर मिन यौमिही हनीसा। भाई सूरत ये, एक शख्स ने कसम उठाई कि वल्लाह मैं रोजा नहीं रखूंगा, वल्लाह ला असूमु, कि वल्लाह मैं रोजा नहीं रखूंगा, फिर इसने सुबह सादिक रोजा शुरू कर दिया। तो जैसे ही ये शख्स रोजा रखेगा उसी घड़ी के अंदर ये हानिस भी हो जाएगा, इसलिए क्योंकि रोजा नाम है तीन चीजों से रुकने का, खाना पीना और बीवी से सोहबत। खाना पीना और बीवी से सोहबत का नाम रोजा है, और इसने क्या कहा था कि वल्लाह मैं रोजा नहीं रखूंगा। तो जैसे ही रोजा शुरू हुआ और इसने नियत भी की हुई है तो चंद लम्हों के लिए रोजा पाया गया, वो इमसाक, वो रुकना पाया गया। तो जैसे ही वो इमसाक पाया गया रोजे का वजूद आ गया, और जैसे ही रोजे का वजूद आया इसने तो कहा था कि वल्लाह मैं रोजा नहीं रखूंगा, तो ये खानिस हो जाएगा। तो इन अल्फाज के अंदर पूरा रोजा रखने से नहीं हानिस होगा, बल्कि उसी घड़ी के अंदर जैसे ही वो रोजा शुरू करेगा वो फौरन हानिस हो जाएगा। लेकिन इसके बजाय अगर वो यूं कहता है वल्लाही ला असूमु सौमन, अब सौमन आगे इसने मफूल जिक्र कर दिया, भाई मफूल जिक्र कर दिया वल्लाही ला असूमु सौमन, तो फिर इस सूरत में पूरा रोजा जब ये कर लेगा तो फिर उस वक्त शाम के वक्त हानिस हो जाएगा, क्योंकि शरीयत में सौम पूरे दिन के इमसाक को कहते हैं। और इसने भी क्या कहा था वल्लाही ला असूमु सौमन, मैं एक रोजा नहीं रखूंगा या मैं रोजा नहीं रखूंगा, और रोजा तो पाया गया जब शाम हो गई तो उस वक्त वह हानिस होगा। तो अगर यह सौम का लफ्ज जिक्र ना करे, सिर्फ यूं कहे वल्लाही ला असूमु, मैं रोजा नहीं रखूंगा, तो शुरू करते ही हानिस हो जाएगा। और अगर यह सौम का लफ्ज जिक्र करे वल्लाही ला असूमु सौमन, तो फिर सौम का लफ्ज तो सारे दिन के रोजे को कहते हैं, तो फिर पूरे दिन का जब रोजा रख लेगा तो फिर शाम को हानिस हो जाएगा भाई। और अगर इसने यौम का लफ्ज जिक्र किया तब भी यही हुक्म है वल्लाही ला असूमु यौमन, तो फिर इस सूरत में भी सारा दिन जब वो रोजा रख लेगा तो शाम को हानिस हो जाएगा। तो कहते हैं वमन हलफ ला यसूमु, और जिस शख्स ने कसम उठाई कि वो रोजा नहीं रखेगा फनवस सौमा, तो इसने रोजे की नियत कर ली वसा मसाअतन, और एक घड़ी इसने रोजा रखा सुम्मा अफ्तरा मिन यौमिही, फिर इसने रोजा तोड़ दिया उस दिन, यानी थोड़ी देर के लिए सुबह रोजा रखा और फिर साथ ही क्या कर दिया तोड़ दिया, कहते हैं फिर भी यह हानिस हो गया क्योंकि रोजा तो बहरहाल पाया गया थोड़ी देर के लिए। तो कहते हैं फनावा सौम, इसने रोजे की नियत कर ली वसा मसाअतन, और एक घड़ी इसने रोजा रखा सुम्मा अफ्तारा, फिर उस रोजे को तोड़ दिया मी यौमी ही उसी दिन में हानिसा, तो ये हानिस हो जाएगा लि वजूद शर्ती, शर्त पाए जाने की वजह से कि रोजा पाया गया। इज सौम हुवल इमसाक अनिल मुफत्तिराती, इसलिए क्योंकि रोजा जो है हुवल इमसाक वो रुकना है अनिल मुफत्तिराती, तीन मुफत्तिरात से, तीन रोजा तोड़ने वाली चीजों से रुकना है। कहते हैं ईद सौम हुवल इमसाक अनिल मुफत्तिराती, इसलिए क्योंकि रोजा जो है वो रुकना है रोजा तोड़ने वाली चीजों से, आला कस्द तकर्रुबी, तकर्रुब के इरादे से, यानी अल्लाह के कुर्बत के इरादे से, अल्लाह के तकर्रुब के इरादे से, यानी इबादत के इरादे से तीन चीजों से रुकना। अगर कोई वैसे रुका हुआ है इन तीन चीजों से तो उसको सौम नहीं कहा जाता, तो बाकायदा नियत करेगा रोजे की तो फिर थोड़ी देर का भी रोजा पाया जाएगा तो ये हानिस हो जाएगा। और रोजे का आगाज किस वक्त होता है सुबह सादिक से, तो सुबह सादिक से शुरू करेगा तो उसी वक्त हानिस हो जाएगा। दिन के दरमियान में अगर ये नियत कर भी ले इसका कोई एतबार नहीं, क्योंकि रोजे का आगाज तो सुबह सादिक से होता है, दिन के दरमियान से नहीं होता भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं इदी सौम हुवल इमसाक अनिल मुफत्तिराती, इसलिए क्योंकि रोजा जो है वो रोजा तोड़ने वाली चीजों से रुकने का नाम है, अला कस्द तकर्रुबी, अल्लाह के तकर्रुब के इरादे से, वलौ हलफा, और अगर किसी शख्स ने कसम उठाई ला यसूम सौमन, देखो अब सौम का लफ्ज जिक्र कर दिया, और अगर किसी शख्स ने कसम उठाई ला यसूम यौमन औ सौमन, या उसने सौम का लफ्ज जिक्र कर दिया कि अगर किसी शख्स ने कसम उठाई ला यसूम यौमन के वो एक दिन रोजा नहीं रखेगा, औ सौमन या वो एक रोजा नहीं रखेगा, फसा मसाअतन सुम्मा अफ्तारा, फिर इसने रोजा रखा एक घड़ी के लिए सुम्मा अफ्तारा, फिर उसको तोड़ दिया ला यहनसु, तो हानिस नहीं होगा, जब तक ये रोजा मुकम्मल नहीं करेगा तब तक हानिस नहीं होगा। तो कहते हैं ला यहनसु, ये हानिस नहीं होगा, लिअन्नहु युरादु बिहि सौमु तामुल मुअ्तबरु शरअन, इसलिए क्योंकि एक सूरत यह है ये यूं कहे ला असूमु सौमन, और एक सूरत यह है ला असूमु यौमन, तो दोनों की दलील जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदाया। पहले जिक्र कर रहे हैं ला असूमु सौमन, सौम को साथ जिक्र करता है, तो कहते हैं लिअन्नहु युरादु बिहि सौमु तामु अल मुअ्तबरु शरअन, इसलिए क्योंकि सौम का लफ्ज इसने जिक्र किया है, और सौम से जो मुराद होता है असौमु तामु, वो पूरा रोजा होता है, अल मुअ्तबरु शरअन, जो शरअन मुअ्तबर हो गई, रोजा वही मुआतबर है जो सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक हो गई, अगर इसे कम है तो वह शरान रोजा नहीं। तो कहते हैं लिया नहू युरादु बिही सौमु तामुल मुआतबर शरान, इसलिए क्योंकि इसने सौम का लफ्ज जिक्र किया है, ला असूमु सौमन, और सौम जो है लिया नहू युरादु बिही सौमु तामुल मुआतबर शरान, सौम से मुराद जो है वो रोजा है अतामु जो कामिल हो, अल मुआतबर शरान, और जो शरान मुआतबर हो गई, वजालिक भी इनहा इही इला आखिरी यौमी, और वो इसको पूरा करना है आखिर यौम तक, वो आखिर यौम तक, दिन के आखिर तक उसको पूरा करने से वो रोजा पाया जाएगा जो शरअन मुअतबर है। तो ये माना है वज़ालिक भी इन्हा इही इला आखिरी यौमी, और ये उस रोजे को आखिर दिन तक पूरा करने से होगा। वलयौम सरीहुन फी तकदीरिल मुद्दती बिही, ये अब दूसरे लफ्ज की दलील दे रहे हैं, जब उसने यौम का लफ्ज जिक्र किया था वल्लाही ला असूमो यौमन, तो इस सूरत में भी सारा दिन रोजा रखेगा तो फिर हानिस होगा, क्योंकि इसने खुद यौम का लफ्ज जिक्र किया है, तो सारे यौम के अंदर जब रोजा आ जाएगा तो फिर यह हानिस होगा। तो कहते हैं वलयौम सरीह फी तकदीर इल्मुद्दती बिही, और यौम का लफ्ज जो है वो सरीह है फी तकदीर इल्मुद्दती बिही, उसके साथ मुद्दत का अंदाजा लगाने में, यौम का लफ्ज जो जिक्र किया गया है वो सरीह है, उससे ये साफ पता चल रहा है कि इस यौम के साथ रोजे का अंदाजा लगाया जाएगा, यानी पूरे दिन का जब यह रोजा रखेगा तब हानिस होगा। तो कहते हैं वलयौम सरीह फी तकदीर इल्मुद्दती बिही, और यौम का लफ्ज सरीह है उसके साथ मुद्दत का अंदाजा लगाने में। वलौ हलफला युसल्ली, अब यही कसम कोई शख्स नमाज के बारे में खाता है, रोजे में इसने कहा था ला असूमु, वल्लाही ला असूमु, तो एक घड़ी का रोजा रखने से भी यह हानिस हो जाएगा। अगर यही लफ्ज वह नमाज में कहता, नमाज के बारे में कहता है वल्लाही ला उसल्ली, वल्ला मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो क्या नमाज शुरू करते ही हानिस हो जाएगा? तो कहते हैं कियास तो यही तकाजा करता है, जैसे वहां रोजा शुरू करते ही वह हानिस हो जाता था, यहां नमाज शुरू करते ही यह हानिस हो जाना चाहिए, लेकिन इस्तेहसानन जब ये पहली रकात का सजदा कर लेगा फिर हानिस होगा, तब तक यह हानिस नहीं, सिर्फ शुरू करने से यह हानिस नहीं है। वजह यह कि नमाज मुख्तलिफ अरकान पर मुश्तमिल है भाई, नमाज की हर रकात मुख्तलिफ अरकान पर मुश्तमिल है, शुरू में तकबीर तहरीमा आती है, फिर उसके बाद कियाम भी है, फिर किरात भी उसमें है, फिर रुकू है, फिर सजदा है, तवज्जो है, तो लिहाजा ये पांचों चीजें जब ये कर लेगा तो फिर हानिस होगा, यानी जैसे ही पहली रकात का सजदा करेगा अब हानिस हो जाएगा, जब तक इसने सजदा नहीं किया तो तब तक ये हानिस नहीं है। ये उस सूरत में जब इसने सिर्फ इतना कहा था वल्लाही ला उसल्ली, और अगर ये कहता वल्लाही ला उसल्ली सलाता, ला उसल्ली सलाता, अब सलात मफूल बिही को भी साथ इसने जिक्र कर दिया है, और तो फिर इस सूरत में जब दो रकतें ये पढ़ लेगा कायदे के साथ तो फिर इस सूरत में ये हानिस हो जाएगा, क्योंकि नमाज जो है वो कम अज कम दो रकतों पर मुश्तमिल होती है जी। तो कहते हैं वलौ हलफला युसल्ली, और अगर एक शख्स ने कसम उठाई कि वो नमाज नहीं पढ़ेगा, फकाम वकारा वरकअ, तो ये खड़ा हुआ और इसने किरात भी की और रुकू भी किया, लम यहनस, तो ये हानिस नहीं हुआ, व इन सजदा मा जालिका, और अगर इसने इसके साथ सजदा भी कर लिया, सुम कता, फिर इसने नमाज तोड़ दी, हानिसा, तो ये हानिस हो गया, जब सजदा कर लिया तब हानिस हो गया। वल कियास अन यहनस बिल इफ्तिताही, और कियास तो ये है कि ये शुरू करने से ही हानिस हो जाए, एतबार अम बि शुरू फी सौमी, रोजे में शुरू करने पर कियास करते हुए, वजहुल इस्तेहसान, इस्तेहसान की वजह यह है कि सलात इबारत अनिल अरकानिल मुख्तलिफती, कि नमाज जो है वह इबारत है मुख्तलिफ अरकान से, इसमें शुरू में तकबीर भी आती है, फिर कियाम है, फिर किरात है, फिर रुकू है, फिर सजदा है, तो लिहाजा ये तमाम चीजें जब हो जाएंगी एक दफा तो फिर यह हानिस होगा। कहते हैं वजहुल इस्तेहसान, इस्तेहसान की वजह यह है कि अन सलात इबारत अनिल अरकान अल मुख्तलिफती, के नमाज जो है वो इबारत है मुख्तलिफ अरकान से, फमा लम याति बि जमीई हाला युसम्मा सलातन, तो जब तक ये इन सारे अरकान को नहीं अदा करेगा, ला युसम्मा सलातन, तो इसको सलात नहीं कहते, बिखिलाफ सौमी, बखिलाफ रोजे के, वहां एक लम्हे का भी रोजा रखता था तो हानिस हो जाता था। तो कहते हैं बिखिलाफ इस स्वामी, बखिलाफ रोजे के, लिअन्नह रुकन वाहिदुन, इसलिए क्योंकि रोजा जो है वो तो एक ही रुकन है, वह वल इमसाकु, और वो रुकना है, तीन चीजों से रुकना है। वह यतकर्ररु फिल जुज इसानी, और उसी का तकरार होता है जुजे सानी में। रोजा तो सिर्फ इमसाक का नाम है, तीन चीजों से रुकना, खाने पीने और बीवी से सोहबत। तो पहले लम्हे के अंदर यह इमसाक पाया गया, फिर अगले लम्हे में फिर इसी इमसाक का तकरार हुआ, फिर इमसाक पाया गया, फिर उससे अगले लम्हे में फिर इमसाक पाया गया। तो इस तरह शाम तक उसी इमसाक का तकरार होता है, कोई नया रुकन बीच में नहीं आता भाई। तो यह माना है ले अन्नहु रुकनु वाहिदुन, क्योंकि रोजा एक ही रुकन है, वह हुल इमसाक, और वह इमसाक है। वह यतकर्ररु फिल जुज इसानी, और उसी इमसाक का तकरार होता है दूसरे जुज में। वला हलफ ला युसल्ली सलातन, भाई अब इसने सलात का लफ्ज भी जिक्र कर दिया, वल्लाही ला उसल्ली सलातन, तो अब दो रकातें कादे के साथ पूरी करेगा तो अब नमाज हो गई, अब हानिस हो गया। तो कहते हैं वला हलफा, और अगर किसी शख्स ने कसम उठा ली, ला युसल्ली सलातन, कि वह नमाज नहीं पढ़ेगा, ला यहनसु मालम युसल्ली रकअतैनी, तो यह हानिस नहीं होगा जब तक दो रकतें न पढ़ ले, लिअन्नहु युरादु बिही सलातुल मुअतबरतु शरअन, इसलिए क्योंकि इससे ऐसी नमाज मुराद होती है जो शरअन मुअतबर हो, व अकल्लुहा रकअतानी, और वो तो कम से कम दो रकतें हैं। लिन्नहि अनिल बुतैरा, इस वजह से कि नाकिस नमाज से मना किया गया है। बुतैरा, बुतैरा याद रखो, बुतैरा ये तस्गीर है बतरा की, और बतरा जो है मुअन्नस है अबतर की, और अबतर कहते हैं दुम कटा, नाकिस, अधूरा जी। तो लिहाजा हदीस में बुतैरा नमाज से मना किया गया है, नाकिस नमाज से मना किया गया है। तो हमारे नजदीक इससे मुराद एक रकत वाली नमाज है, एक रकत वाली नमाज नाकिस है, तो दो रकतें होनी चाहिए कम अज कम भाई। तो ये माना है, कहते हैं वह अकल लुहा रकातानी, और नमाज की कम से कम दो रकतें हैं। लिन्नहि अनिल बुतैरा, नाकिस नमाज से मना करने की वजह से। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, बाबुल यमीन फी लुब्स सियाबी वल हुली वगैरह जालिक, ये बाब है उस कसम के बयान में, फी लुब्स सियाबी, जो कपड़े पहनने के बारे में हो, वल हुली और जेवर के बारे में हो, वगैरह जालिक और इसके अलावा के। इस बाब में उस यमीन के अहकाम बयान करेंगे जिसमें कपड़े पहनने का जिक्र हो या जेवर वगैरह पहनने का भाई। तो कहते हैं वमन काल लिमरअती ही, और जिस शख्स ने अपनी बीवी से कहा, इन लबिस तुम इन गजली की, कि अगर मैंने तेरे काते हुए सूत में से पहना, फह हुआ हद यून, तो वह हद ही है। सूरत है मसला ये भाई, सबसे पहले तो यह गजल समझ लें, गजला यगजिलु गजलन, इसका माना है सूत कातना, यानी रुई से धागा बनाना, रुई और कपास वगैरह से धागा बनाना, तो इसको कहते हैं गजल भाई, गजला यगजिलु गजलन। तो गजल का माना सूत कातना भी मस्तर है, और गजल बमाने मगजूल के भी इस्तेमाल होता है, काती हुई सूत जो है वो बनाया हुआ जो धागा है उसको भी क्या कहते हैं, गजल। तो सबसे पहले रुई से धागा बनाया जाता है, और फिर उस धागे से कपड़ा बुना जाता है। तो एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि तेरे काते हुए सूत में से, यानी तेरे काते हुए धागों में से अगर मैंने पहन लिया तो वो हदी है जी। वो हदी है। और आप पढ़ चुके हैं कि हदी उस जानवर को कहते हैं जो कुर्बानी की नीयत से मक्का भेजा जाए जी। वो जानवर जिसको कुर्बानी की नीयत से मक्का भेजा जाए उसको हदी कहते हैं भाई। और उस जानवर को वहीं जिबा करके वहां फुकरा में उसके गोश्त को तकसीम कर दिया जाता है। तो यहां तो कपड़े की बात हो रही है, इस खावन ने क्या कहा है, अगर मैंने तुम्हारी काती हुई सूत को पहना, यानी उससे बना हुआ कपड़ा अगर मैंने पहना तो वो हदी है। तो मुराद यह है, यानी वो मक्का के फुकरा पर सदका है जी। उसे मैं मक्का के फुकरा पर सदका करूंगा। अब सूरत यह है कि इस शख्स ने यह कसम खा ली, और फिर उसके बाद यह रुई खरीद कर लाया, कसम खाने के बाद यह रुई खरीद कर लाया, और फिर इस रुई से इसकी बीवी ने धागा बनाया, और फिर उससे इस बीवी ने ही कपड़ा बनाया, और फिर उस कपड़े को इस खावंद ने पहन लिया। तो इमाम साहब फरमाते हैं अब यह कपड़ा इसको मक्का के फुकरा पर सदका करना पड़ेगा, यह हदी है, ये क्या है, हदी है मक्का के फुकरा पर सदका करना पड़ेगा। जबकि साहिबैन फरमाते हैं नहीं, ये हदी नहीं है, ये इस पर लाजिम नहीं। हां, जिस दिन इसने कसम खाई थी उस दिन इसकी मिल्कियत में जो रुई थी
जी,
वो इस कसम के तहत दाखिल है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं जाब्ता कि यमीन के मुनाकिद होने के लिए जरूरी है कि वो चीज आपकी यमीन के वक्त ममलूक हो, या आप मिल्कियत की तरफ निस्बत करें, या सबब मिल्कियत यानी खरीदने वगैरह की तरफ निस्बत करें। तो जिस दिन ये जिसने इसने कसम खाई थी उस दिन जो इसकी मिल्कियत में रुई थी उन पर ये यमीन मुनाकिद हो गई, उन पर ये मन्नत मुनाकिद हो गई। तवज्जो है, जब ये मन्नत उन पर मुनाकिद हो गई तो इस रुई से वो धागा बनाएगी और फिर कपड़ा बुनेगी और उसको फिर खावंद पहनेगा, तो फिर इसको मक्का के फुकरा पर सदका करना पड़ेगा। लेकिन वो रुई जिसको वो मन्नत के बाद खरीद कर लाए वो इस मन्नत के तहत दाखिल नहीं है। फर्क समझ में आया? तो कहते हैं वमन काल इमरअती ही, और जिस शख्स ने अपनी बीवी से कहा इन लबिस तुम इन गजली की, अगर मैंने तेरी काती हुई सूत में से पहना फहुआ हदियन, तो वो हदी है। फश्तारा कुतनन, फिर उसके बाद खावन ने रुई खरीदी। कुतन रुई और कपास को कहते हैं। फश्तारा कुतनन, तो खावन ने रुई खरीदी। फगजलत हो, फिर बीवी ने उसे सूत काता यानी उसे धागा बना लिया। फना सजत हो, फिर बीवी ने उस सूत से उस धागे से कपड़ा बुन लिया। फल्ला बिसा हो, फिर खावन ने उसको पहन लिया। फहुआ हदयुन इंदा अबी हनीफा रहमतुल्लाह, तो ये जो लिबास है ये जो कपड़ा है अब ये हदी होगा इमाम साहब के नजदीक, इसको मक्का के फुकरा पर सदका करना पड़ेगा। वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं लैसा अलैहि अन युहदिया हत्ता तगज़िल मिन कुतनि मलकहु यौम हलफा। साहिबैन क्या फरमाते हैं कि ये हदी नहीं है, क्योंकि ये रुई इसने मन्नत के बाद खरीदी है, बल्कि वो रुई जो मन्नत के वक्त इस आदमी की मिल्कियत में थी, अगर उससे ये औरत धागा बनाती है और फिर कपड़ा बुनती है तो वो कपड़ा अगर ये पहनेगा तो वो हदी होगा। बात समझ में आ गई? तो वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं लैसा अलैही अन युहदिया, कि इस शख्स पर वाजिब नहीं है कि इसको हदी करे। हत्ता तगज़िला मिन कुतनिन, यहां तक कि औरत जो है वो धागा बनाए मिन कुतनिन ऐसी रुई से। मलकहु यौम हलफा, जिसका मालिक था ये खावंद यौम हलफा, जिस दिन इसने कसम उठाई थी। वह मानल हदी, मैंने हदी का माना बतला दिया कि हदी उस जानवर को कहते हैं जिसको कुर्बानी की नीयत से मक्का भेजा जाए, और यहां हदी से मुराद मक्का के फुकरा पर सदका है भाई। तो कहते हैं वह मानल हदी, और हदी का माना जो है अत्तसद्दुक बिही बिमक्का, वो इसको मक्का में सदका करना है। लिअन्नहु उस्मुन लिमा युहदा इलैही, इसलिए क्योंकि हदी नाम है उस जानवर का जिसको मक्का की तरफ भेजा जाता है। लहुमा, साहिबैन की दलील यह है कि अन नजर इन नमा यसे खुफिल मिल्की, कि मन्नत जो है वो मिल्कियत में ही सही होती है। औ मुजाफन इला सबबिल मिल्की, या सबब मिल की तरफ मुजाफ होकर मन्नत सही होती है, जैसे यमीन के अंदर था इसी तरह मन्नत के अंदर भी है भाई। तो लहुमा, साहिबैन फरमाते हैं अन नजर इन नमा यसे खुफिल मिल्की, कि मन्नत अपनी मिल्कियत में सही है। औ मुजाफन इला सबबिल मिल्की, या सबब मिल की तरफ मुजाफ होकर सही है। वलम यूजद, और हाल यह है कि इनमें से कोई चीज नहीं पाई गई जो बाद में रुई खरीद कर लाया है, ना तो यह मन्नत के वक्त इसकी ममलूका थी और ना इसकी तरफ इसे मिल्कियत की निस्बत की थी। तो कहते हैं वलम यूजद, और इनमें से कोई भी चीज नहीं पाई गई। लिअन नल्लुबसा वगस ललमर अति लैसा मिन असबाबी मिल्की ही, लिअन नल्लुबसा, इसलिए क्योंकि पहनना वगस ललमर अति और औरत का सूत कातना लैसा मिन असबाबी मिल्की ही, ये दोनों तो इसकी मिल्कियत के असबाब में से नहीं है। इसने क्या लफ्ज जिक्र किए थे, इन लबिस्तु मिन गजली की फहुआ हदयुन, तो इसने पहनने को जिक्र किया और औरत के सूत कातने को जिक्र किया। अगर मैंने तेरी काती हुई सूत में से पहना तो वो हदी है
जी।
तो पहनना ये भी मिल्कियत का सबब नहीं है, कोई चीज पहनने से कोई आदमी उसका मालिक नहीं बन जाता
जी।
और सूत कातने से भी कोई उस सूत का मालिक नहीं बन जाता। तो इसने तो यही दो चीजें जिक्र की हैं, यानी कहने का मतलब यह है ये जो बाद में रुई खरीद कर लाया है इसकी तरफ इसने मिल्कियत या सबब मिल्कियत की निस्बत नहीं की है भाई, इसने तो सिर्फ पहनने या सूत काटने को जिक्र किया है और वो तो असबाब मिल्क में से नहीं है भाई। लिहाजा बाद में जो सूत जो रुई खरीद कर लाएगा वो इस मन्नत में दाखिल नहीं है। तो ये माना है ले अन्न लुब सवगजल मर अति लई साम इन असबाब मिल्की ही, इसलिए क्योंकि पहनना और औरत का सूत कातना ये इसकी मिल्कियत के असबाब में से नहीं है, तो लिहाजा बाद वाली रुई इसमें दाखिल नहीं। व लहू, अब इमाम साहब की दलील आ गई। वह लहू और इमाम साहब की दलील यह है अन्न गजल मर अति आदत यकून मिन कुतनी ज़ौजी। इमाम साहब फरमाते हैं कि औरत आम तौर पर जिस रुई से धागा बनाती है सूत कातती है वो अमूमन उसी के खावंद की ममलूका होती है जी। वो उसी के खावंद की ममलूका होती है और बात चल रही है यमीन की या मन्नत की और इसके अंदर दारोमदार उर्फ पर है और उर्फ के अंदर आदत क्या जारी है कि औरतें अपने ही खावंद की ममलूका रुई से सूत काटती हैं
जी।
लिहाजा जब गजल का जिक्र आ गया तो यूं समझो मिल्कियत का भी जिक्र आ गया
जी।
क्योंकि औरतें धागा किससे बनाती हैं अपने खावंद की ममलूका रुई से ही भाई, आदत इसी तरह है और कस्मों में रिवाज और आदत का एतबार होता है। तो कहते हैं वल्लहू, इमाम साहब की दलील यह है कि अन्न गज़ल अल-मर अति आदतन यकून मिन कुतनी ज़ौजी, कि औरत का सूत कातना आदतन वो खावंद की रुई से होता है। वल मुअताद हुवल मुराद, और वो चीज जो मुअताद हो वही मुराद होती है मन्नत और यमीन वगैरह में। वज़ालिका सबबुन लि मिल्की ही, और ये उसकी मिल्कियत का सबब है। जब खावंद की रुई से धागा बनाएगी तो खावंद का वो ममलूक हुआ भाई, रुई का भी मालिक कौन था? खावंद। और उसे जो धागा बना अब उसका मालिक भी कौन है? खावंद है भाई। तो यह माना है वदालिका सबबुन लि मिल्की ही, और यह सबब है खावंद की मिल्कियत का। लिहाजा यहां खावंद ने क्या कहा था, इन लबिस्तो मिन गजली की, तो यहां गजल का जिक्र तो आ गया और यह सूत कातना होता ही किससे है, खावंद की ममलूका रुई से, लिहाजा गजल का जिक्र ऐसे ही है जैसे वो खावंद अपनी मिल्कियत को जिक्र कर रहा है भाई, यानी मेरी ममलूका रुई से तूने सूत काता और फिर उससे कपड़ा बुना और मैंने पहन लिया तो वो हदी है। लिहाजा चाहे बाद में भी वो रुई ले आता है ये भी क्या है, खावंद की ममलूका है भाई, तो ये भी मन्नत के अंदर दाखिल है भाई। तो कहते हैं वज़ालिका सबबुन लि मिल्की ही, और ये खावंद की मिल्कियत का सबब है कि ये खावंद की रुई से धागा बुना गया है। वलिहादा यहनसु इज़ा गज़लत मिन कुतन ममलूकिन लहू वक्तन नजर। अच्छा भाई, साहिबैन क्या फरमाते हैं कि जब मन्नत मानी थी उस वक्त जो ममलूक रुई है उसी से अगर धागा बनाएगी और कपड़ा बुनेगी और उसको पहनेगा तो यह हदी होगा, अगर बाद में रुई खरीद कर लाया तो यह मन्नत के तहत दाखिल नहीं। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं, जब औरतों में आदत ही यह जारी है कि वह अपने खावंद की रुई से ही धागा बनाती हैं, और चुनांचे इसीलिए साहिबैन ने क्या कहा कि मन्नत के वक्त जो रुई खावंद की ममलूक है वो मन्नत में दाखिल है और रुई वगैरह मन्नत में दाखिल नहीं। तो साहिबैन को जवाब दे रहे हैं कि वो जो काती हुई सूत है, वो जो काती हुई सूत है उस रुई से जो मन्नत के वक्त खावंद की ममलूक है उसको आपने कैसे दाखिल कर दिया
जी।
आपने कहा है खावंद ने जो अल्फाज जिक्र किए उसमें तो सिर्फ पहनने को जिक्र किया है और गजल यानी सूत कातने को जिक्र किया है, मिल्कियत को तो जिक्र ही नहीं किया। अगर मिल्कियत को जिक्र नहीं किया तो फिर वो रुई इसमें कैसे दाखिल हो गई जो कसम के वक्त उसकी ममलूक है, उसको भी तो आपने इसी गजल की वजह से दाखिल किया है, तो जब उसको दाखिल किया है तो बाद में जो खरीदेगा वो भी खावन की ममलूक होगी, वो भी इसके अंदर दाखिल हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वलिहादा यहनसु, और इसीलिए शख्स हानिस हो जाएगा इजा गजलत मिन कुतन ममलूकिन लहू, जब ये औरत धागा बनाएगी उस रुई से ममलूकिन लहू जो खावंद की ममलूक हो वक्तन नजरी मन्नत के वक्त में। लिअन अल कुतन लम यसिर मजकूरन, इसलिए क्योंकि रुई जो है वो तो मजकूर नहीं हुई, खावन की ममलूका रुई, यह तो कहीं पर भी बात जिक्र नहीं हुई, फिर भी आप कहते हैं कि मन्नत के वक्त जो खावन की ममलूका रुई है वो मन्नत के अंदर दाखिल है। भाई ये ममलूका रुई आपने कैसे दाखिल कर दी मन्नत के अंदर, हालांकि मन्नत में तो रुई का जिक्र ही नहीं है। तो जैसे आपने इस रुई को दाखिल किया है गजल की वजह से, क्योंकि औरतों में आदत ही क्या जारी है, वो अपने खावन की रुई से धागा बनाती हैं, तो लिहाजा जब ये मौजूदा रुई इसके अंदर दाखिल है तो बाद में जो खरीदेगा वो भी इसके अंदर दाखिल हो जाएगी। बात समझ में आ गई, ये माना है। फिर तर्जमा देख लीजिए, वलिहादा यहनसु, और इसीलिए शख्स हानिस हो जाएगा, इदा गजलत मिन कुतल ममलूक लहू वक्तन नजरी, जब ये सूत कात ले उस रुई से जो खावन की ममलूक है मन्नत के वक्त, लिअन अलकुतन लम यसिर मजकूरा, इसलिए क्योंकि रुई जो है वो तो मजकूर नहीं हुई, खावन के कौल में तो रुई मजकूर नहीं हुई। बात समझ में आ गई, आगे देखिए, वमन हलफ ला यलबसु हलयन फलबिस खातम फिज्जतिन लम यहनस। भाई याद रखो, हलयुन हा के फतहा के साथ ये जेवर को कहते हैं, और इसकी जमा हुलियुन आती है, हलयुन मुफरद है और हुलियुन ये उसकी जमा है। भाई अब सूरत ये, एक शख्स ने कसम उठाई कि वल्लाह मैं जेवर नहीं पहनूंगा, और फिर इसने चांदी की अंगूठी पहन ली, तो क्या ये हानिस हुआ या नहीं? कहते नहीं, हानिस नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि चांदी की अंगूठी को उर्फ में भी जेवर नहीं कहते और शरीयत में भी जेवर नहीं कहते, इसीलिए तो मर्दों के लिए इसका इस्तेमाल जायज है। अगर ये जेवर होता तो शरीयत इसकी इजाजत न देती। लेकिन याद रखना, फुकहा फरमाते हैं ये उस सूरत में है जब ये अंगूठी जो इसने चांदी की बनाई है वो मोहर की नीयत से पहनी हुई है, और अगर उस अंगूठी के अंदर नगीना लगा हुआ है फिर ये जेवर शुमार है, और फिर इसको पहनेगा तो हानिस हो जाएगा। भाई तो कहते हैं, वमन हलफ ला यलबसु हलियन, और जिस शख्स ने कसम उठा ली कि वो जेवर नहीं पहनेगा, फलबिसा खातम फिज्जतिन, तो इसने चांदी की अंगूठी पहन ली, लम यहनस, तो ये हानिस नहीं होगा, लिअन्नहु लैस बिहलियन उर्फन व शरअन, इसलिए क्योंकि ये जेवर नहीं है उर्फन भी और शरअन भी, उर्फ में भी इसको जेवर नहीं कहते, आम लोग भी इसको जेवर नहीं कहते, और शरअन भी ये जेवर नहीं है, हता उबीहा इस्तेमालुहु लिर्रिजाली, यहां तक कि इसका इस्तेमाल मुबा है मर्दों के लिए, हता उबी हस्तेमाल रिजाली, यहां तक कि इसका इस्तेमाल मुबाह किया गया है मर्दों के लिए, व तखतुम भी ही, तखतुम का माना है अंगूठी पहनना, व तखतुम भी ही, और इसको अंगूठी के तौर पर पहनना भी मुबाह है, लिकस दिल खत्मी, मोहर की नीयत से, खत्म किसे कहते हैं? मोहर को, तो मोहर की नीयत से अंगूठी पहनना मर्द के लिए, मर्द के लिए मुबाह है और जीनत के एतबार से मुबाह नहीं है। भाई तो कहते हैं, फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं हता उबी हस्तेमालुहु लिर्रिजाली, यहां तक कि इसका इस्तेमाल जो है वो मुबाह किया गया है मर्दों के लिए, व तखतुमु बिही लिकस्दिल खत्मी, और इसी तरह इसकी अंगूठी पहनना भी मुबाह किया गया है मर्दों के लिए, लिकस्दिल खत्मी, मोहर लगाने की नीयत से, व इन काना मिन ज़हबिन हनीसा, और अगर यह अंगूठी सोने की हुई, इसने कहा था वल्लाह मैं जेवर नहीं पहनूंगा और सोने की अंगूठी पहन ली तो हानिस हो जाएगा। तो कहते हैं वह इन कान मिन ज़हबिन, और अगर वह अंगूठी सोने की हुई हानिसा तो यह हानिस हो जाएगा, लिअन्नहु हलयुन, इसलिए क्योंकि यह जेवर है, वलिहादा ला यहिल्लु इस्तेमालुहु लिर्रिजाली, और इसीलिए मर्दों के लिए इसका इस्तेमाल हलाल नहीं है। भाई क्योंकि यह जेवर है और मर्दों के लिए तो जेवर जायज नहीं है। वला उल्ला बिसा इकद लुकलू इन गैरा मुरसाइन ला यहनसु इंदा अबी हनीफत रहमल्ला वकाला यहनसु। सूरत मसला यह कि एक शख्स ने कसम खाई है कि वल्ला मैं जेवर नहीं पहनूंगा, और इसने मोतियों का हार पहन लिया जी। तो क्या हानिस हुआ या नहीं? तो इमाम साहब फरमाते हैं, अगर इन मोतियों के साथ सोना या चांदी भी लगी हुई है तो फिर इस सूरत में तो यह हानिस हो जाएगा क्योंकि यह जेवर है, लेकिन अगर सिर्फ मोती हैं तो फिर इनको उर्फ के अंदर जेवर नहीं कहा जाता, लिहाजा यह हानिस नहीं होगा। लेकिन साहिबैन फरमाते हैं, खाली मोतियों को का हार भी पहन लेगा तो हानिस हो जाएगा। तो फुकहा फरमाते हैं यह दरअसल जमाने का इख्तिलाफ है। इमाम साहब के जमाने में सिर्फ मोतियों का हार जिसमें सोना या चांदी ना हो यह मुअताद नहीं था, इसको जेवर नहीं समझा जाता था, और जबकि साहिबैन के जमाने में सिर्फ अकेले मोतियों का हार जो है उसको भी जेवर समझा जाता था। भाई तो कहते हैं वलौ लबिसा इक्द लुलुइन, इक्द हार को कहते हैं और लुलु जो है मोती को कहते हैं, और गैरा मुरस्सइन, रस्सअ युरस्सउ तरसी का माना है मुरक्कब करना, जोड़ना, यानी सोने चांदी के साथ हीरे जवाहरात को जोड़ना या मोतियों के साथ सोने या चांदी को जोड़ना, इसको तरसिया कहते हैं। कहते हैं वला उल्ला बिसा इक्द लुलुइन गैरा मुरस्सइन, और अगर इसने मोतियों का ऐसा हार पहन लिया जो गैर मुरस्सअ है, यानी उसके साथ सोना या चांदी नहीं लगाई गई, ला यहनसु इंदा अबी हनीफा रहमला, तो इमाम साहब के नजदीक हानिस नहीं होगा क्योंकि यह जेवर नहीं है। वकाला यहनसु, और साहिबैन फरमाते हानिस हो जाएगा, लिअन्नहु हलयुन हकीकतन, इसलिए क्योंकि यह हकीकतन जेवर है। हता सुम्य बिही फिल कुरआनी, यहां तक कि इसको कुरान में भी इसी नाम से मौसूम किया गया है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वह तस्तखरीजू नहिलयतन तलबसू नहा, वह तस्तखरीजू नहिलयतन तलबसू नहा। कुरान के अंदर मीठे और नमकीन पानी का जिक्र आता है, दरिया और समुंदर का जिक्र आता है। अल्लाह फरमाते हैं इन दोनों से तुम ताजा गोश्त भी निकाल कर खाते हो, और इन दोनों से तुम जेवर भी निकालते हो जिसको तुम पहनते हो। तो यहां देखो आप, ये जो मीठे और नमकीन पानी से तो मोती निकाले जाते हैं, और कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं वह तस्तखरीजूना हिलियतन, तो मालूम हुआ इनको जेवर कहा गया है भाई। तो कहते हैं वकाला यहनसु, साहिबैन फरमाते हैं सिर्फ मोतियों का हार पहनने से भी यह हानिस हो जाएगा, लिअन्नहु हलयुन हकीकतन, इसलिए क्योंकि यह भी जेवर है हकीकत के एतबार से। हता सुम्य बिही फिल कुरआनी, यहां तक कि कुरान में भी इसको जेवर के नाम के साथ मौसूम किया गया है। वलहु, इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहु ला युतहल्ला बिही उर्फन, इसके साथ जीनत इख्तियार नहीं की जाती उर्फन, इल्ला मुरस्सअन, मगर मुरस्सअ करके, यानी खाली मोतियों के हार के साथ जीनत इख्तियार नहीं की जाती, बल्कि इसके साथ सोना चांदी वगैरह को मिलाया जाता है, फिर उसके बाद इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो कहते हैं वलहु, इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नहु ला युतहल्ला बिही उर्फन इल्ला मुरस्सअन, के उर्फ के एतबार से इनसे जीनत हासिल नहीं की जाती मगर सोने चांदी के साथ जोड़कर। व मबनल ऐमान अलल उर्फी, और कस्मों का दारोमदार जो है वह उर्फ पर होता है, कस्मों की बुनियाद उर्फ पर होती है। वकीला, और कहा गया है हाज़ा इख्तिलाफ़ असर व ज़मानीन, कि यह जमाने का इख्तिलाफ है, असर और जमान का एक माना है भाई। इबारत क्या है, वकीला हाज़ा इख्तिलाफ़ असर व ज़मानीन, असर के बाद जो जमान लाए हैं यह अत्वे तफसीरी है, यह इसी असर की तफसीर बयान कर रहा है। तो कहा गया है हाद अख्तिलाफ असर व जमानी, कि यह जमाने का इख्तिलाफ है। इमाम साहब के जमाने में और रिवाज था, साहिबैन के जमाने में और रिवाज था, साहिबैन के जमाने में खाली मोतियों से भी जीनत इख्तियार की जाती थी और इसको भी जेवर कहा जाता था। तो कहते हैं वकील हाद अख्तिलाफ असर व जमानी, और कहा गया है यह जमाने का इख्तिलाफ है। वयुफ्ता बिकौली हिमा, और साहिबैन की कौल पर फतवा दिया जाएगा। लिअन्न तहल्ली बिही अलल इन्फिराद मुअतादुन, इसलिए क्योंकि जीनत हासिल करना बिही मोतियों के जरिए, अलल इन्फिरादी अकेले मोतियों के जरिए जीनत हासिल करना, यानी बगैर सोने और बगैर चांदी के, मुअतादुन, ये मुअताद है, लोगों की आदत है, उनमें राइज है। तो कहते हैं वयुफ्ता बिकौलिहिमा, और साहिबैन के कौल पर फतवा दिया जाएगा। लिअन्न तहल्ली बिही अलल इन्फिरादि मुअतादुन, इसलिए क्योंकि अकेले मोतियों के साथ जीनत हासिल करना मुअतादुन, ये मुअताद है, लोगों में इसकी आदत है। वमन हलफ ला यनामु अला फिराशिन, सूरत मसला ये, एक शख्स ने कसम उठाई कि वल्लाह मैं फिराश पर नहीं सोऊंगा, फिराश बिछोना यानी बिस्तरा, और फिर इस बिस्तरे के ऊपर उसने एक चादर बिछाई और फिर उसके ऊपर लेट गया, तो हानिस हुआ या नहीं। कहते हैं हानिस हो गया, हानिस हो गया, क्योंकि ये चादर ये बिस्तरे के ताबेअ हो गई भाई, असल तो क्या है यहां बिस्तरा है भाई, तो उसके ऊपर लेटा है, तो ये हानिस हो गया। तो कहते हैं वमन हलफ ला यनामु अला फिराशिन, और जिस शख्स ने कसम उठाई कि वो बिछोने पर नहीं सोएगा यानी बिस्तरे पर नहीं सोएगा, फनाम अलैही, तो ये शख्स उस पर सोया। वफौकहु किरामुन, किराम कहते हैं मुनक्कश कपड़े को, नक्शो निगार वाला जो कपड़ा हो, वफ़ा कहू किरामुन, इस हाल में कि उस बिछोने के ऊपर जो है नक्शो निगार वाला कपड़ा था, हानिसा, तो ये हानिस हो जाएगा, ले अन्नहू तबाउन लिल फिराशी, इसलिए क्योंकि ये फिराश के ताबे है, तबाउन, तबाउन में बा पर भी फतहा है भाई, ये बमाने ताबे के है, ये मुफरद और जमा सब के लिए इस्तेमाल होता है। कहते हैं लिया नहू तबाउन लिल फिराशी, इसलिए क्योंकि ये कपड़ा जो है उस बिछोने के ताबे है, फयुअद्दुन्ना इमन अलैही, तो इस कसम खाने वाले को उस बिछोने पर ही सोने वाला शुमार किया जाएगा, तो हानिस हो जाएगा। व इन जुइला फौकहू फिराशुन आखर, भाई अगर उस बिछोने के ऊपर, इसने एक मुअय्यन बिछोने की कसम खाई कि वल्लाह मैं इस बिछोने पर नहीं सोऊंगा, इस बिस्तरे पर मैं नहीं सोऊंगा, फिर उस बिस्तरे के ऊपर एक और बिस्तरा डाल दिया गया और फिर ये ऊपर सो गया, तो कहते हैं अब हानिस नहीं हुआ, अब ये हानिस नहीं हुआ। कहते हैं वह इन जो इलाफा कहू फिराशुन आखर, और अगर उस बिछोने के ऊपर एक और बिछोना रख दिया गया, फनामा अलैही, फिर ये उस पर सो गया, ला यहनसु, तो ये हानिस नहीं होगा, लिअन्न मिस्ल शय इला यकूनु तबअन लहू, इसलिए क्योंकि चीज का मिसल उसके ताबे नहीं हो सकता, अदना तो आला के ताबे हो सकता है, लेकिन कोई चीज उसी के मिसल हो वो उसके ताबे नहीं हो सकती। तो जब ये ऊपर वाले बिछोने पर सोया है तो अब इसको नीचे वाले बिछोने पर सोया हुआ शुमार नहीं किया जाएगा। तो कहते हैं लिया नमिस लशय इला यकून तबान लहू, इसलिए क्योंकि चीज का मिसल जो है वो उसके ताबे नहीं हो सकता, फयन कत निस्बत अनिल अव्वली, तो निस्बत कट जाएगी पहले से, यानी पहले बिस्तरे से निस्बत कट जाएगी। यूं नहीं कहेंगे कि ये नीचे वाले बिस्तरे पर सोया है, बल्कि क्या कहेंगे, ये ऊपर वाले बिस्तरे पर सोया है, ये माना है। फयन कत निस्बत अनिल अव्वली, तो उस पहले बिछोने से सोने की निस्बत कट जाएगी। वलौ हलफा, और अगर किसी शख्स ने कसम उठाई, ला यजलिसु अलल अर्जी, कि वो जमीन पर नहीं बैठेगा, फजलसा अला बिसातिन औ हसीरिन लम यहनस, सूरत ये एक आदमी ने कसम उठाई कि वल्लाह मैं जमीन पर नहीं बैठूंगा, फिर उसके बाद वो जमीन पर कोई बिछोना, कोई चादर वगैरह बिछाई गई थी या कोई चटाई बिछाई गई थी, उसके ऊपर बैठ गया, तो क्या हानिस हुआ या नहीं? कहते हैं नहीं, चटाई पर या चादर पर बैठने वाले को जमीन पर बैठने वाला नहीं कहते, लिहाजा अगर ये वैसे जमीन पर बैठेगा बगैर चादर वगैरह के, फिर हानिस हो जाएगा। तो इस पर सवाल पैदा होता है कि जमीन पर यह वैसे भी बैठेगा तो इसके कपड़े तो हाइल हो गए, इसने कपड़े तो पहने हुए हैं तो कपड़े तो हाइल हो गए, लिहाजा इसको भी जमीन पर बैठने वाला नहीं कहना चाहिए। कहते हैं नहीं, कपड़े तो इसने पहने हुए हैं लिहाजा वो इसके ताबे हो गए जी। हां, अगर इसने एक जोड़ा कपड़ों का पहना हुआ है और दूसरा जोड़ा उसने जमीन पर बिछाया और उसके ऊपर बैठ गया, अब भी अपने कपड़ों पर बैठा हुआ है, अब इस सूरत में यह हानिस नहीं होगा, क्योंकि नीचे जिन कपड़ों पर वो बैठा हुआ है वो इसके ताबे नहीं, वो इसने पहने नहीं हुए, तो वो इसके और जमीन के दरमियान हाइल हो गए। भाई सूरत समझ में आ गई? तो कहते हैं वलौ हलफा, अगर किसी शख्स ने कसम खा ली, ला यजलिसु अलल अर्जी, कि वो जमीन पर नहीं बैठेगा, फजलसा अला बिसातिन औ हसीरिन, बिसात कहते हैं बिछोना या दरी वगैरह, और हसीर कहते हैं चटाई को भाई, तो कहते हैं फजलसा अला बिसातिन औ हसीरिन, फिर वो किसी दरी पर या किसी चटाई पर बैठा, लम यहनस, तो ये हानिस नहीं होगा, लिअन्नहु ला युसम्मा जालिसन अलल अर्जी, इसलिए क्योंकि इसको जमीन पर बैठने वाला नहीं कहते, बिखिलाफ मा इदा हाल बैनहु बैन अर्ज लिबासुहु, बखिलाफ उस सूरत के कि जब इसके और जमीन के दरमियान इसका लिबास हाइल हो जाए, ये जो इसने लिबास पहना हुआ है वही हाइल हो जाए तो फिर ये हानिस हो जाएगा, लिअन्नहु तबाउन लहू, क्योंकि इसका लिबास इसके ताबे है, इसने पहना हुआ है, अगर ये लिबास पहना नहीं होगा तो फिर इस सूरत में जब लिबास के ऊपर यह बैठेगा तो फिर हानिस नहीं होगा। तो कहते हैं लिअन्नहु तबअउन लहू, इसलिए क्योंकि इसका लिबास इसके ताबे है, फला युअतबरु हाइलन, लिहाजा उसको हाइल नहीं समझा जाएगा। व इन हलफ ला यजलिसु अला सरीरिन, सरीर भाई चारपाई को भी कहते हैं, और इसी तरह कोई तख्त वगैरह हो लकड़ी वगैरह का उसको भी सरीर कहते हैं। अब एक शख्स ने कसम उठाई कि वल्लाह वो सरीर पर नहीं बैठेगा, चारपाई या तख्त पर नहीं बैठेगा, और फिर उस तख्त या चारपाई के ऊपर चटाई बिछा दी गई या कोई और चीज बिछा दी गई, कोई बिछोना दरी वगैरह बिछा दी गई, और फिर ये उसके ऊपर बैठा, तो क्या हानिस होगा या नहीं? कहते हैं हानिस हो जाएगा। कहते हैं इसलिए क्योंकि चारपाई या तख्त पर عموماً اسی طرح بیٹھا جاتا ہے، اوپر کوئی چیز بچھائی جاتی ہے تو یہ حانس ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس چارپائی کے اوپر اس نے ایک اور چارپائی رکھی اور اس پر بیٹھا، یا اس تخت کے اوپر ایک اور تخت اس نے رکھا اور اس کے اوپر بیٹھا، تو پھر حانس نہیں ہوگا بھائی، کیونکہ ایک چیز کا مثل جو ہے وہ اس کے تابع نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں وہ ان حلف لا یجلس علی سریر، اور اگر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ چارپائی پر یا تخت پر نہیں بیٹھے گا، فجلس علی سریر، پھر وہ اس چارپائی یا تخت پر بیٹھ گیا، فوقہ بساط او حصیر، جس کے اوپر دری یا چٹائی تھی، حانیسا، تو یہ حانیس ہو جائے گا، لانہ یعد جالسا علیہ، اس لیے کیونکہ اس آدمی کو اسی چارپائی پر بیٹھنے والا شمار کیا جاتا ہے۔ والجلوس على السرير في العادة كذلك، اور چارپائی وغیرہ پر بیٹھنا عادت میں اسی طرح ہوتا ہے کہ اوپر کوئی چیز بچھائی جاتی ہے، بخلاف ما اذا جعل فوقه سريرا اخر، بخلاف اس کے کہ جب اس نے اس چارپائی یا تخت کے اوپر ایک اور سریر رکھ دیا، ایک اور چارپائی یا تخت رکھ دیا، تو پھر حانس نہیں ہوگا، لانه مثل الاول، اس لیے کیونکہ دوسرا سریر جو ہے پہلے کے مثل ہے، فقط عن نسبت عنه، تو اس دوسرے سریر نے پہلے سریر سے نسبت کو کاٹ دیا، یعنی اب اس کے بیٹھنے کی نسبت اس پہلے سریر کی طرف نہیں ہو رہی، لہذا اس صورت میں یہ حانس نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی، حل ہو گیا، چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔